ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तवैवास्मि तवैवास्मि न जिमामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नयमां चरणान्तिके। भगवान की कृपा से हम लोगों का सप्ताह काल तक का श्रीमद् भागवत में से 6 दिन आज छठा दिन है, कल 7वां दिन, इस बार के लिए अंतिम दिन होगा। हम अभी सप्तम अष्टम स्कंध तक पहुंचे हैं, 10, 11 और 12 3 बाकी हैं। बहुत सी कथाएं हैं किंतु रोज 1 घंटा से नहीं होता। रोज यदि 24 घंटा पाठ किया जाए तो कहीं उसका पारायण होगा क्यों, अर्थ पर्थ नहीं, और अर्थ से रूप से यदि लगे साधारण अर्थ भी तभी 1 वर्ष। और हम लोग जैसे व्याख्या के साथ में एक एक श्लोक का भाव गंभीर रूप से देते हैं, वैसे तो कितने वर्षों लग जाएंगे। तो जिसको समय नहीं है उन लोगों के लिए 7 दिन जैसे तैसे हो, और जिसको उससे भी अधिक इच्छा है वो लोग प्रतिदिन ही करें, उन लोगों के लिए 1 महीने का रखा गया। 1 महीने में कुछ कुछ उनके लीला चरित्रों का वर्णन किया जा सकता है, और इससे भी अधिक हो तो जीवन भर के लिए। निगम कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भाव। हे रसिक और भाव लोग, जब तक मूर्छित होकर के न और गिर जाओ, अथवा जब तक होश है सारा जीवन इसका अध्ययन करो। नए नए इसके अर्थ और भाव पैदा हुए, नई नई भक्ति इसमें पैदा हुई। ये प्रकार से कृष्ण नित्य नवीन है, ये भागवत कथा भी नित्य नवीन है। इसलिए बहुत सी कथाओं को हमने ये 1 घंटा बोल रहे हैं, इसलिए उसमें भी कीर्तन, इसलिए हमने छोड़ दिया। संक्षेप में हमने कुछ कुछ बतलाया। अभी भरत महाराज जी का चरित्र भी हमने पूर्ण रूप से नहीं बतलाया, तभी उसमें जो सारांश है बतलाया। महाराज चित्रकेतु का उसमें उपाख्यान है, बहुत ही अच्छा है। एक समय इंद्र अपने गुरु जी के प्रति अपराध किया, और अपराध के कारण दानवों ने उनके ऊपर में विजय प्राप्त की। भागते रहे इधर उधर, अब दानव लोग उनको विजय कर लिया। इसके बाद में फिर से ब्रह्मा जी के परामर्श से फिर उन्होंने यज्ञ किया, और यज्ञ के बाद में फिर उनको राज्य मिला। किंतु राज्य मिलने के बाद में फिर उन्होंने कुछ गड़बड़ी की। जहाँ गुरु के प्रति अन्याय होगा, गुरु के प्रति अवज्ञा होगी, और गुरु भी उत्तम कोटि का यदि होगा तो हमारा सर्वनाश होगा। और गुरु साधारण है, ऐसे हैं जो भजन नहीं करने वाले, तो वो तो गुरु गुरुकर्ण ही नहीं हुआ। तो नारद वो इंद्र ने देवताओं पर फिर विजय प्राप्त करनी चाहिए, किंतु उनके वंश में जो थे वो कोई बड़े तपस्वी कोई, उन्होंने यज्ञ कराया दानवों से, त्रष्टा ऋषि, तो वो तो ऊपर से तो देवता की थी, किंतु मातृकुल उसका दैत्य दानों से था, इसलिए देवताओं के लिए आहुति देने पर भी बीच बीच में असुर के लिए भी आहुति दे देती थी, दे देता था। इसलिए इंद्र बड़े कुपित हुआ और उसको गला काट दिया। इसके बाद में वित्रासुर का जन्म हुआ। अब वित्रासुर और इंद्र में युद्ध हुआ, हजारों वर्ष युद्ध हुआ, मार न सके। तब दधीचि ऋषि के यहां गए, उनको प्रसन्न किया, वर मांगे। जे वर हमको एक दीजिए, क्या जीवित अवस्था में ही अपना हाड़ हमको दान कर दीजिए। तो ऋषि हंसने लगे, तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, बड़े भारी स्वार्थी हो, अपने स्वार्थ के लिए हमारी जीवित अवस्था में ही हड्डी मांग रहे हो। हंसने लगे, फिर दया करके उन्होंने दही और बूरा सारे शरीर में ये कर दिया, लपेट दिया। गायों की जीभ बड़ी रूखर, बड़ी तेज होती है, धार की समान, एक बार चाट लेना तो ये मांस मालूम होता है, ये निकाल लेंगे। विशेष करके इधर की बड़ी बड़ी जो गायें होती हैं, थोड़ा जीभ देखेंगे तो चटवाया, और चाटने से वो सारा ये सब दधी पूरा लगाती गई और वो चाटती गई गायें, और ये सब पूरा जितना मांस टांस जो कुछ था सब कुछ उन्होंने चाट लिया, केवल हड्डी बच गई। और उसी हड्डी से वज्र बना, और वो वज्र इंद्र को दिया गया, और इंद्र से कहा गया कि इसे इसी वज्र से तुम उसे मार सकते हो, अन्यथा नहीं। और बाकी जो बना जो रह गया उससे धनुष एक बना, वही रामचंद्र जी ने जिस धनुष को तोड़ा था वो धनुष था परशुराम के पास। तो इस तरह से वो वज्र के द्वारा युद्ध होने लगा, किंतु मार नहीं सकते थे। जब उसने गर्जन करके उनके ऊपर में अपने शूल छोड़ा तो उनके हाथ से वज्र गिर पड़ा, उठा नहीं सके लज्जा के मारे। ऐरावत भी भाग गया वहां से, और उस समय कहा जे ये इंद्र हमको क्या मारेगा। उस समय में भगवान की उन्होंने जो स्तुति की है, असुर होते हुए भी श्रीमद् भागवत में दिव्यमान एक दिव्य रत्न है, जिसमें अंतिम श्लोक है, अजात पक्षा इव मातरम खदा खगा स्तन्ये जथा बच्चा तरह क्षुधार्ता प्रिय प्रिय विषुतंग विषन्ना मनोरबिंदाक्ष विदिक्षते त्वं अहं हरे तौ पादैक मूल दासानुदासो भविताः। हे हरे, आपके दासों का अनुदासों का अनुदास मुझे बना लीजिए। मुझे स्वर्ग की जरूरत नहीं है, मुझे मुक्ति की जरूरत नहीं है, मुझको संसारी किसी भी वैभव की जरूरत नहीं है, संसार के किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तन से आपको सब समय, मन से सब समय स्मरण करें, अपनी सारी इंद्रियों से आपकी सेवा करें, जिहो आपका गुणगान करें, और हाथ इत्यादियों से आपकी सेवा करें। तीन ही चीज हमें, तन मन और वचन, तन से सेवा करूं, मन से आपके गुणों का गान करूं, और तन मन और वचन से आपके गुणा का अनुवाद। मैं कैसे तीनों को कैसे नियुक्त करूं, इस प्रकार से नियुक्त अजात पक्षाइव मातरम खगा। जैसे चिड़िए के बच्चे होते हैं और उनको भी डैने नहीं उठे, और अभी बच्चा भी है, और जैसे माँ कहीं गई चारा लाने के लिए तो ये डर से सपकता है, डरता है कि कोई पक्षी आकर के हमें, कौवे अथवा और दूसरे जानवर हमें खाने जाएं, इसलिए मैया के लिए सबसे में पुकारता रहता है चे 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 माँ के लिए, जा तो सकता नहीं इसलिए सब समय पुकारता है। ऐसे में ही आपको पुकारा करूं, किंतु चिड़िया किस लिए पुकारती है, अपनी माँ के लिए दूध देगी या खिलाएगी और उसका डर दोनों चला जाएगा, तो उनको लज्जा होगी, ऐसा नहीं। अजात पक्षायुव मातरम खगा स्तन्ये यथा बच्चा तरह सुधारता। जिस प्रकार से बछड़े अपनी मैया के लिए डांव डांव पुकारते हैं, शाम हो गई, दूध दोहने का समय हो गया, रस्सी में बंधा हुआ है, मैया घास चर करके जंगल से आई और ये दौड़ करके लगना चाहता है मैया को जो दूध पिए, किंतु आदमी क्या करते हैं, उसको छोड़ते तो हैं, छोड़ करके फिर वो जब दूध दूहने के लायक बना लेते हैं स्तन को, तब उसका मालिक उसे हटा करके और फिर बांध देता है, गैया उसको चाटती है। तो जब तक वो दूर रहता है और खोलने के लिए जाएंगे, खोलने नहीं देता और दो पैर पर खड़ा होकर के एकदम दौड़ता है मैया की तरफ में। ऐसे मैं मन से पक्षी जैसे अपने अपनी माँ के लिए और बछड़ा जैसे ये बोली से भी चिल्लाता है, डांटा करता है अपनी मैया के पास जाने के लिए, इस प्रकार से मैं भी आपके लिए पुकारूं ऐसे तन्मय होकर के। किंतु इसमें भी कुछ स्वार्थ है, मैया के दूध के लिए वो ऐसा करता है, मैं इसके लिए नहीं। तब तीसरा उदाहरण दिया, प्रिय प्रिय विशुतंग विषन्ना। जिस प्रकार से प्रियतमा कोई पतिव्रता स्त्री अपना पति कहीं बाहर में विदेश में गए हैं तो दिन भर उनके लिए सोचती है, मन जैसा सोचता है ऐसे मैं आपके लिए सोचूं, और बछड़ा जैसे पुकारता है ऐसे आपका गुणान बात जोर जोर से करूं, हरि नाम करूं जोर जोर से, और जिस प्रकार से पक्षी उन्हीं के विषय में चिंतन करता वैसे मैं उसका चिंतन, स्वार्थ इसमें दूर हो गया। उसी तरह से बिना किसी स्वार्थ के तैद धारावत अभिछिन्न गति से अपनी सारी इंद्रियों से भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनका नाम कीर्तन करें, उनका स्मरण करें, तो इसका नाम भक्ति है, इसे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उस भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। यह सुन करके इंद्र कहते हैं, अरे इसको मैं कैसे मारूं, ये तो महाभक्त है, जो मुझको नहीं हुआ और ये असुर में होकर के भी ऐसा हुआ। तो फिर आवाज आई, नहीं इसको मारना है, वो कह रहा है जी हमें मारो जल्दी से, इस असुर दैत्य देह में हमारा भजन नहीं होता तामसिक शरीर से, इसलिए जल्दी से यह शरीर छोड़ करके मैं फिर से अपने स्थिति में जाना चाहता हूं। अंत में हजारों वर्ष तक वज्र से काटते रहे, तब कहीं जाकर के खत्म हुआ। परीक्षित महाराज जी ने कहा, महाराज सुखदेव जी ये कौन था जो असुर के कुल में भी होते हुए भी और इस प्रकार से भगवान के प्रति गोपियों जैसी भक्ति को मांग रहा है, कौन है ये, पूर्वजन्म में कौन था, तब उसके लिए बदला है। ये साधारण नहीं, पूर्वजन्म में महाराज चित्रकेतु थे, ये इनकी कम से कम तो हजारों, उसमें तो लिखा है 1,00,000 शब्द के प्रारंभ की बात, 1,00,000 उनकी पत्नियां थीं और किसी को भी बेटा नहीं, किसी को भी कोई संतान नहीं। इतना बड़ा भारी भूमंडल का राज्य उनको, किंतु कोई भी बच्चा नहीं, सब कुछ उनके राज्य में है, संपत्ति अथाह है, सेनाएं हैं, सब कुछ है, किंतु शांति नहीं, क्योंकि बच्चा नहीं। सोच रहे हैं जिसको बच्चा नहीं वो बड़ा भारी दुर्भाग्य है, मरने के बाद में उसका पिंड कौन देगा? पिंड नहीं देने से नरक में उसको शांति कैसे होगी? जो भी मनुष्य इस जगत में है, चाहे और ना चाहे उनको पाप करना पड़ता है, चाहे और ना चाहे किसी न किसी रूप में उनको पाप करना ही पड़ेगा। पानी पिएंगे उसमें तरह तरह के छोटे छोटे अणु कीड़े होते हैं, वो पीने से मरेंगे, उसको पाप लगेगा। घड़े में पानी रखते हैं, आजकल तो व्यवस्था ही बदल गई, घड़े के नीचे उसमें कीड़े रहते थे, ऐसे करने से वो मर जाते थे। आप चलेंगे तो जरूर ना कुछ कीड़े मरेंगे ही, चींटियां रहेंगी, कुछ न कुछ छोटे छोटे ऐसे कीड़े होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते, दूरबीन में भी नहीं दिखाई पड़ते, तो ये सब मरेंगे ही। और एक विशेष बात है, प्राणियों का आहार प्राणी ही है, इस कहां जाएंगे? तो कुछ न कुछ पाप होता है, इसलिए पाप तो करने के लिए बाध्य है, किंतु यदि हम भगवान को बन करके उनका प्रसाद ग्रहण करें तब उसमें पाप नहीं लगता। मां चित्रकेतु जी को बच्चा नहीं सोच रहे हैं कि आप भंकर हम लोगों से पाप हो गया जो हमको बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं रहने से तो फिर हमारी गति नहीं होगी, पिंड कौन देगा, कौन हमको जल देगा, और हमारे राज्य के बाद में इस राज्य को देखेगा कौन, ये बड़ी भारी चिंता। तो हमारा जन्म क्यों हुआ बेकार का, जबकि संतान नहीं पैदा हुआ, मैं सबसे संसार में दुखी हूं, इस प्रकार के कर ही रहे थे। इतने में पर्वत नाम के एक ऋषि वहां पर उपस्थित हुए तो उनको प्रणाम किया साष्टांग, बोले जी महाराज। उन्होंने कहा तुम्हारा कुशल है? पहले उनका हाथ पैर धोया, उनकी आरती उतारी, उनको संतुष्ट किया, इसके बाद राज सिंहासन से उतर कर उन पर राज सिंहासन पर उनको बैठा करके हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। महाराजा भूमंडल का एक ही ज्ञान है, और पर्वत महाराज कैसे, जंगल में तपस्या करने वाले, भगवान की आराधना करने, उनके सामने ये नतमस्तक होकर के बैठ गए। उन्होंने पूछा, ऋषि ने, सुखी है, कोई कष्ट तो नहीं, तुम्हारे राज्य में सभी ठीक है, समय पर वर्षा होती है, प्रजा लोग तुमसे सुखी हैं, तुम अपने सैनिकों को और कमांडरों को समय पर वेतन देते हो कि नहीं? यदि ना दे तो क्या होगा? बगावत हो जाएगी, विद्रोह हो जाएगा, और अपने मान्यजनों का, गुरुजनों का आदर तो करते हो, तुम्हारी स्त्रियां तुमसे प्रसन्न रहती हैं, उनका यथाजथ आदर तो करते हो या नहीं करते? जिस इस घर में स्त्रियों का आदर नहीं होता वो घर नहीं, नरक हो जाता है। आदमी आजकल करके कलयुगी मनुष्य नहीं समझते, वो श्मशान है, इसलिए ये सब ठीक है। उन्होंने कहा जी आपने जैसा कहा वो सब कुछ ठीक है, धन धान्य से, राज्य से, प्रजा से, स्त्री से, सब प्रकार से मैं सुखी, बस एक ही चीज का टोटा है। क्या टोटा है? यदि हमको कोई संतान पैदा हो जाए, कोई पुत्र हो जाए, तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। उन्होंने कहा मैं तो देख रहा हूं, मैं ऊपर से ही जान जाता हूं, तुमको संतान नहीं है भाई, संतान नहीं है, तुमको संतान ही नहीं है, चाहे एक जन्म में, दो जन्म में, हम तो 7-10 जन्म तक देख रहे हैं, तुमको कोई भी संतान नहीं। महाराज ऐसे बिल बिलाते हुए मैं मरूंगा? देखो संतान से आदमी सुखी नहीं होता, आदमी सुखी होता है भगवान का स्मरण करने से। ये शरीर तुम नहीं हो, और जो संतान तुम्हारी जन्मेगी वो तुम्हारी संतान नहीं है, वो तो सभी भगवान के दास हैं, अपने अपने कर्मों से एक एक जगह में होते हैं, कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई कुछ कुछ कुछ, और फिर सबको छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए आज तक कोई धन से, संपत्ति से, पुत्र से, परिवार से, संतान से कोई सुखी नहीं हो सकता। आज जिसको अपना पुत्र मान रहे हो, जब वो बड़ा हो जाएगा, शादी कर दोगे, तो वो अपना फुर उड़ जाएगा दूसरी जगह स्त्री को लेकर, अब तुम्हारे पास नहीं आएगा, उसके जो बच्चे होंगे उसमें वो आसक्त हो जाएगा, वो तुम में आ सकते, तुमको पानी देने के लिए उसको फुर्सत नहीं, क्या को हमारी बच्चे सब बीमार रहते हैं, मैं कैसे आ जाऊं, मैं अब हम वो तो अमेरिका में है और उसके बाप हैं इंडिया में और उनको पानी देने वाला कोई नहीं, नहीं? और छोड़ करके यहाँ पर अब कैसे इनको छोड़ करके वहां जाए, तो पुत्र का संतान का सुख कहाँ मिला। पहले लोगों को होता था जब एक परिवार होता था, आजकल वो सब नहीं, तो वो कह रहे हैं इससे आदमी सुखी नहीं हो सकता है। तुम भगवान का भजन करो और ये रियलाइज करो जब मैं तुम क्या हो, इसी से सुखी रह सकते हो, तुम इसे संतुष्ट रखो, भगवान ने तुम्हारे ऊपर में कृपा किया है, ये तुम्हारी आसक्ति संतान पर नहीं है। उसको छोड़ करके भगवान का भजन करना बड़ा भारी कठिन है, इसलिए मेरी बात को सुनो। कहे नहीं प्रभु, मैं तो अब अनाहार ही अब ये शरीर को आपके सामने छोड़ दूंगा, आप मुझे जैसे तैसे आप समर्थ हैं पुत्र देने में, मैं जानता हूं आप शक्ति रखते हैं, इसलिए हमको एक पुत्र दे दीजिए बस, और हम कुछ नहीं चाहते। बहुत मना करने पर भी जब नहीं माना तो अब क्या करते, कहे अच्छी बात है ठीक है, ये ले जाओ अपनी स्त्री को खिला देना। हुआ क्या, देखा जे पुत्र तो है नहीं, तो सोचा जब मैं ही इसके घर में जाऊं, इसकी इसकी स्त्री के घर में। उन्होंने कहा यह पुत्र होगा अवश्य होगा, बड़ा सुंदर सुकांत होगा, किंतु हर्ष और शोक को देने वाला होगा। हर्ष माने क्या, आनंद, और शोक माने बड़ा दुख को देने वाला। कहा जे कोई बात नहीं, हमारी आज्ञा नहीं मानेगा, उन्होंने समझा आज्ञा नहीं मानेगा, कभी कभी बदमाशी करेगा कोई बात नहीं है, मैं सह लूंगा, किंतु पुत्र तो हो। बस प्रसन्न हो गए। और कुछ दिनों के बाद में ऋषि गए कहीं अपना ध्यानस्थ होकर के रह गए और उसके पुत्र के रूप में ही आ गए। 5 वर्ष तक रहे, वो बेटा ऐसा हुआ इतना सुंदर चांद जैसा मुकड़ा कि दिन रात वो बढ़ता गया, बहुत ही सुंदर मधुर भाषी, सब समय मुस्कुराहट तो उसके चेहरे पर खिलती, जो ही आता उसी को गोदी में ले लेता, स्नेह करने लगता। और महाराज की तो हजारों रानियां थी, सबको छोड़ करके दिन रात इसी के पास में बैठा रहता। राज्य भी ब्राह्मणों को कह दिया और मंत्री लोगों को, जैसे तुम लोग देखना कभी कभी आ जाया करो, बस बेचे के खिलाते रहता, और जिसको लड़का था उसी स्त्री के घर, रानी के घर रहता। और जो जिस स्त्रियां थी बड़ी दुखी हो गई। पहले तो नौकरानी जैसा भी एक कपड़ा दे देता था, साबुन के लिए, तेल के लिए, कभी पूछ भी लेता जाए कैसी है। अब तो ये महाराज जी हमारे पति हमको पूछते ही नहीं है, ये सब का कारण ये बच्चा है। जब तक बच्चा रहेगा तब तक हम लोगों को चैन नहीं होगी, कोई पूछेगा नहीं, घर में नौकरानी को भी तो कुछ पूछते हैं, तो ये कुछ के लिए नहीं पूछते, इसलिए वो भीतर ही भीतर में असंतुष्ट हो गई। उन्हें सोचा कि किसी प्रकार से बालक को समाप्त करना है। एक दिन रानी बच्चे को पल्ले में झुला रही थी और झुला करके अपनी दाई से कहा, दाई मैंने नौकरानी से कहा, जरा इसको संभालना, मैं जरा ये काम से पास ही जा रही हूं। वो किसी काम से वो पास में चली गई। इतने में बहुत देर हो गई किंतु आज बच्चा रोया नहीं। मैंने कहा जैसे क्या हो गया, आज बच्चा अभी तक नहीं रोया, अब तक तो रोता जरूर। हुआ क्या, इसी बीच में देखा जयरानी तो दूर गई हैं और नौकरानी भी किसी काम से इधर उधर हट गई। उन रानियों ने परस्पर परामर्श करके एक कालकूट विष, एक सीप सीतुहा होता था पहले, सीप सफेद सा समुद्र से निकलता है, उसमें दूध थोड़ा सा दे करके उसमें विष मिला करके और दे दिया। एक सेकंड के अंदर में उसका सारा शरीर काला पड़ गया, छटपट करता हुआ बेचारा वो मर गया। जब उन्होंने दाई को कहा बेटे को देखो तो अभी तक क्या हुआ, जो नहीं रो रहा है, जल्दी उसे ले वो दूध पिलाऊंगी। जाई गई, दाई गई, देखा जी सारा शरीर काला पड़ा हुआ है, ये तो मरा हुआ है, बस छाती पीट करके वहीं पर रोने लगी। रानी दौड़ी वहां पर गई, देखी जैसे सारी तो बेटा तो मरा हुआ है, बस वो भी छाती पीट करके वहीं पर मूर्छित हो गई। अब तो सार जो लोग थे सब रोने लगे। महाराज को खबर मिली, वो भी दौड़े दौड़े आए, देखा जी तो बेटा मरा हुआ है और रानी भी तो मरने को ही है। सब लोग रोने लगे, सारी प्रजाएं, राजा, सब लोग, मंत्रिमंडल, ब्राह्मण जितने थे सभी रोने लगे। कोई सांत्वना देने के लायक नहीं रहा। उसी समय पर्वत तो शरीर से निकल गए, फिर नारद ऋषि को साथ लेते हुए वहां पर उपस्थित हुए। क्या बात है भाई, क्या बात है? कोई उत्तर नहीं दे रहा, कोई भी उत्तर नहीं दे रहा। बहुत कहने पर लोगों ने कहा जी इसका बेटा मर गया, बेटा मर गया। बुला करके सबको कहने लगे, उपदेश देने लगे, अरे भाई बेटा मर गया, बेटा यदि दिल्ली गया तो आएगा कब? गया ना, मर गया, मर नामक एक स्थान है, वहां गया तो आएगा। तो जब वहां गया जहां से फिर लौटना नहीं होता, कभी नहीं लौटेगा, नहीं लौटेगा, तुम झूठ क्यों बोलते हो? ये तो यहीं पर पड़ा हुआ है ये बेटा, इससे बातचीत करे, कहीं गया नहीं। जिसको तुमने बेटा कहा वो तो यहीं पर है, इसी को तो दूध पिलाया, ये तो यहां पर पड़ा हुआ है, इससे बातचीत करो। नहीं, अपने ये नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलता? आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है तो क्या हुआ, वो तो है। तो नहीं, जो वह था वही चला गया, तो तुमने उसको दूध पिलाया नहीं, इसको उत्तर देते नहीं बनता। अच्छा ये बतलाओ, वो कितना मोटा था, कितना लंबा था, गोरा था या काला था? तो ये भी नहीं देखा। अरे जिसको देखा नहीं उसके लिए क्यों रह रहे हो? और जिसको देखा, जिसको खिलाया पिलाया, जिसको पुत्र कहा, जिसको पति कहा, भाई कहा, मैया, बाप कहा, वो तो तुम्हारे सामने यहां पर पड़ा हुआ है, इसे बोलो, बातचीत करो। काजी ये नहीं बोलेगा, वो जो था बोलने वाला चला गया, तो उसको देखने के लिए कभी प्रयत्न किया तो नहीं? तो फिर रोते क्यों हो? आप लोगों को भी ये समझना चाहिए, ये शरीर आत्मा नहीं है, एक दिन जाएगा, चाहे रो चाहे जो कुछ करो, चाहे बंबई से रोने वाले बुला लो। बंबई से रोने वाला बुलाना जानते हैं कैसे? वो किराए में मिलते हैं रोने वाले, 5 रुपया दो तो 5 रुपया का रोना रोएंगे, और 100 रुपया दो तो दिन भर रात भर रोएंगे, है ना? और 8 आना का यदि होगा तो 8 आना का कीर्तन कर देंगे, रो देंगे, तब आंसू बने ओ कर देंगे, जैसा पैसा देंगे उतना ही वो रोएंगे। तो भले ही संसार के सब लोगों को बुला लो और सभी लोग रहे तो लौटेगा वो कभी नहीं लौट सकता। इसलिए रोने से क्या होता है, दिन भर रोते रोते तुम कुछ नहीं कर सकते, नहीं आ सकता, इसलिए मत रो। देखो जिस उसके अंदर में आत्मा क्या चीज है, उसके लिए चिंतन करो, उसके लिए कुछ करो। उसके लिए हम लोगों को भेज देते हैं, ये जाओ कहो सब लोगों से, कहा ये सब बातें, ये अभी से स्मरण करना आरंभ कर दें, कोई कष्ट नहीं, दिन में, रात में, सवेरे, स्नान करके, बिना स्नान किए खाते पीते जलते फिरते उठते बैठते छींकते फिसलते हुए भी ओ प्रभु का नाम करो, ये सारी चीजें दूर हो जाएगी, यौन मन के चक्कर से सदा के लिए निकल जाएंगे। देखो एक बात और कहता हूं, एक कबूतर एक कबूतरी थी, उसको 2-4 बच्चे हुए, तो वो अपने खोते में घोंसले में उनको रख करके कहीं घास खाने कोई चीज चुनने के लिए ये बच्चों के लिए भी लाएंगे और अपने भी खाएंगे, वो उड़ करके चले, उड़ करके एक ऐसे हरे भरे मैदान में पहुंचे। मैदान बड़ा हरा भरा था, तरह तरह के फूल थे, पास में नदी थी, एक पेड़ की डाल पर बैठकर और वहीं पर दोनों परस्पर चोंच में चोंच मिला करके अपनी पूर्व स्मृतियों को, कैसे हम लोग मिले, कैसे बच्चे हुए, कैसे दिन आए, बड़े सुख से हम लोग रहे। अपने प्रेम की बातें, जैसे कि घर वाले घर वाली बातें करते हैं, बड़े प्रेम से घुल मिलकर ऐसे कर रहे थे। इतने में कबूतरी ने देखा चावल के कुछ कण घासों पर बिखरे हैं। कबूतर ने कहा, प्रिय प्रियतम, यहां पर चावल के बड़े सुंदर सुंदर कण बिखरे हैं, अपने भी खाऊंगी, हम लोग खाएंगे और बच्चों के लिए भी ले चले, बड़े सुंदर है। पति ने कहा, जी मत जाओ, अरे बनिए का घर थोड़े है जो चावल यहां पर बिकता है, और किसी कृषक का भी यहां पर घर नहीं है जो यहां पर पैदा करता है। मालूम पड़ता है कोई बहेलिया यहां पर जाल लगा रखा है और उस पर बिखेर दिया है हमको बझाने के लिए, यदि उड़ करके जाएगी तो अपने जाल में तुम्हें फंसा देगा, मत जाओ, मेरी बात सुनो। किंतु और नहीं मानी, मुझे पुरुषों को ऐसे ही षड्यंत्र दिखते हैं, बस फुर्र उड़ करके गई और वहां पर जहां ही बैठी और दाना एक दो चुंग रखा था, इतने में एक मोटा सा काला सा कोई आदमी बैठा था पेड़ के आड़ में, बहेलिया, उसने झट जाल खींच दिया, रस्सी खींचते ही जाल में आबद्ध हो गई। अब तो बिलबिलाने लगी, बहुत जोर जोर से रोने लगी, पति से भी रहा नहीं गया, डाल से ऊपर से आकर के जाल के पास ही जहां वो थी, चोंच से चोंच बाहर से ये भीतर से, वो दोनों मिलाकर के बिलाप कर। पति कहता है कि तुम यदि बची होती तो बच्चों का पालन पोषण कर सकती थी, मैं बच करके ही क्या करूंगा, बच्चों का तो पालन पोषण मैं नहीं कर सकता, हाय भगवान ने हमको क्यों नहीं ले लिया, तुमको ले लिया। दोनों खूब रो रहे थे, बहेलिया ताक में था, उसने देखा जी ये भी रोने में और उसके साथ में आसक्त हो करके वो भी रो रहा है, दोनों रो रहे हैं, शरीर का होश नहीं है, बस बाण उठाया और बस क्रूर हंसी हंसता हुआ वहीं से बाण जो मारा वो पुरुष के हृदय में लगा, इस पार से उस पार हो गया, खून गिरने लग गया और वो भी मर गया। मरने के बाद में उसको उठाया पकड़ करके और रस्सी से और उसको जीवित उसको दोनों को बांध दिए पैर और लेकर के घर गया और उन्हें भून बांध करके खा लिया। पर्वत जी कह रहे हैं ये देखो वो तो गया और उसके शोक में विफल होकर के तुम लोग अभी जो रो रहे हो, नहीं देख रहे कि काल तुम्हारे ऊपर में है, अपनी चिंताएं नहीं करते। वो बहेलिया माने मृत्यु अभी तुम्हारे ऊपर में बाण छोड़ने वाला है, इसके लिए चिंता करो जो तुमको क्या करनी चाहिए, ये हुआ सो तो हुआ, अब उसके लिए सुध लो। हम लोगों की ऐसी ही दशा है, हमारे पुरखे गए, दादा परदादा गए, उनके भी बाबा दादा पितामह सब गए, हम समझते हैं कि हम अब मरेंगे नहीं। आश्चर्य की बात, बच्चे से अभी हम बूढ़े होने जा रहे हैं, 50-60 की उम्र भी हो गई है, तभी ये ध्यान नहीं आता कि हम मरने वाले हैं। तभी अन्याय अत्याचार दूसरों को सताना दूसरों से और जो पाप के काम है वो करता है, भगवान का स्मरण जो करता है उसका विरोधी हो जाता है, उसकी अकल नहीं आती है, इसलिए ऐसा करना उचित नहीं। इस प्रकार से जब कहा तो चित्रकेतु महाराज की आंखें खुल गई। नारद जी ने कहा जी कहां बच्चा है, ये सामने पड़ा हुआ था, उसके छाती पर हाथ रख दिया, बेटा उठो 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 उठो, क्यों सो रहा है, तुम्हारे माता पिता ये सब लोग रो रहे हैं। नाथ के कहने से वो झट मरा हुआ व्यक्ति बच्चा उठ करके, अरे तुम्हारे माता पिता रो रहे हैं और तुम यहां से जा रहा, कहां गया तुम, मैं जहां हूं बहुत सुखी है महाराज, अब हमको यहां पर मत बुलाइए, कौन जन्म के ये माता पिता है मेरी समझ में नहीं आता, हम भी इनके कभी माता पिता हुए होंगे, ये तो ऐसा ही चलता है, मैं भगवान का भजन नहीं किया, हमारा जीवन वृथा गया, इसलिए अब मैं समझ रहा हूं, अब मैं सत्संगत में हूं और हमें अब यहां पर आने की कोई भी आवश्यकता नहीं। कहा जी आप ऐसे पुत्र को रखोगे, उन्होंने कहा जी अब हमारी आंखें खुल गई, हमारा पुत्र मिल गया, अब हमको जरूरत, जब यही हमको नहीं चाहता है और हमारा भी मरना निश्चित है, तो अब क्यों नहीं भगवान का भजन करो। उस समय मेरी आंखें नहीं खुली थी, अब मेरी आंखें खुली, अब मैं तो भगवान का भजन, आप कृपया हमको मंत्र दे करके हमारा उद्धार की। तब उन्होंने उस चित्रकेतु महाराज जी को मंत्र दिया। किसका मंत्र दिया? बलदेव जी का, राम बलराम जी का मंत्र दिया। और फिर चले, जब जा रहे थे इतने में वो जो महिलाएं थी हजारों रोती हुई आई, वो तो और चित्कार करके रो रही थी, दिखला रही थी जैसे उसके स्वयं हम रो रहे। अब उन यहां आकर जैसे देखिए महाराज, हमने बच्चे के मारा, ये हमारा अपराध, आप कृपा कीजिए, अब हमारी कैसे गति होगी, हमने ये दुष्कर्म तो किया, न उसको सुखी रख सकी ना अपने सुखी रही, आपकी बातें सुन करके हमारी भी आंखें हमारे ऊपर में भी गया है, कृपा कर। तो पर्वत महाराज जी ने और नारद जी ने इन सब को भी मंत्र दिया, ये भी घर छोड़ करके चित्रकेतु महाराज की भांति भजन करने के लिए चले। चित्रकेतु महाराज जी भजन करने के बाद में सिद्ध होने पर भगवान के परिकर बन करके चारों तरफ में उनकी गति रहती थी, अब साधारण नहीं रहे, अजर अमर हो गए भगवान का भजन करने पर, जन्म मृत्यु से अतीत हो गए। एक दिन घूमते घूमते शंकर जी के पास में आए, शंकर जी उनके गुरु भाई हैं, वो भी शंकरसन राम के शिष्य हैं, उनके आराध्य हैं। तो जब आए तो उस समय में कैलाश पर्वत पर शंकर जी बड़ी विराट सभा में, देवताओं और ऋषियों मुनियों की सभा में नंगे होकर के पार्वती जी को अपनी गोदी में लेकर के बैठे हुए और सबको हित की उपदेश की बात कर रहे हैं, तत्व ज्ञान की बातें कर रहे हैं। चित्रकेतु महाराज जी उनके गुरु भाई लगते हैं, इसलिए हंस करके बोले, अरे जरिया लोगों का भी तो ध्यान रखो, स्वयं नंगे होकर के अपनी पत्नी को, सुंदर पत्नी को यहाँ पर रख करके और उपदेश कर रहे हो, ये क्या अच्छी बात है, लोक मर्यादा का भी तो ध्यान रखो। तो शंकर जी मुस्कुरा करके बड़े सम्मान के साथ उनको बिठाया, गुरु भाई का ये अधिकार है ये कह सकता है। पार्वती जी को बड़ा बुरा लगा, ब्रह्मा जी जिसको उपदेश नहीं दे सकते हैं संसार में, उनको उपदेश देने के लिए कोई नहीं है, और तुम इनका गुरु बन करके आया है इनको उपदेश देने के लिए, जाओ तुम राक्षस हो जाओ, असुर हो जाओ। तो ये मुस्कुराने लगे चित्रकेतु महाराज, एवं मस्तु ऐसा ही हो, ऐसा ही। शंकर जी बड़े कुछ रुष्ट हुए और पार्वती जी को बोले, अहो तुम बड़ी सुंदरी हो, इस अपमान में डूबे हुए, यदि ये चित्रकेतु महाराज तुम्हारा साप नहीं लेते तो ये साप तुम्हारे पास में लगता, तुमको लग जाता, ये कर सकते थे कि अपराध तुम्हारा, अभिशाप तुम्हारा तुम्हारे पास मारे, हमसे इससे कोई मतलब, तो इतने शक्तिधर हैं अब उसको नहीं लेते, और उल्टे तुमको यदि अभिशाप देते तो तुम मरती। तो ये तो मुस्कुराते हुए तुम्हारे लिए ग्रहण कर लिया, ये जहां भी रहेंगे नरक में रहें, जहां भी रहें स्वर्ग में रहें बैकुंठ में रहें, इनके लिए सर्वत्र एक ही गति है, ये अपने इस भक्ति से संतुष्ट रहते हैं, जो कोई भी स्थिति हो उसमें भगवान को भूल नहीं सकते, इसलिए इनका तो कुछ हुआ नहीं, तुम्हारा अपराध हुआ, तुमसे इसे क्षमा मांगनी चाहिए। इसके बाद में शंकर जी समाधिस्थ हो गए, उसी से उन्होंने इस अभिशाप को ग्रहण करके चित्रकेतु महाराज वो वृत्रासुर होकर के आने पर भी उनकी वृत्ति नहीं बदली थी, मुक्त पुरुष अभिशाप लेकर के आ सकते हैं, किंतु अभिशाप उनको नहीं, हनुमान को कोई अभिशाप दे तो वो लेंगे, ये लोग समर्थ हैं, नारद जी को देने से नहीं लेंगे, वो उल्टे दे सकते हैं कुछ, ये सबसे अतीत हैं ये महात्मा लोग, कुछ नहीं पास में, किंतु बड़े तेजस्वी होते हैं, बड़े शक्तिशाली होते हैं, इसलिए असुर होने पर भी उनकी भक्ति नष्ट नहीं हुई, किंतु फिर भी उनका साप ग्रहण करके जो साप की मर्यादा नष्ट न हो इसलिए ग्रहण किया। ये चित्रकेतु महाराज हैं, यदि भजन करना है तो इनसे कुछ सीखना है, जो जैसा है उसी में संतुष्ट रहो, पुत्र नहीं है कोई बात नहीं, भगवान को ही मान करके और उनकी सेवा करो, उसी से सुख होगा, पुत्र, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती किसको था? रावण को। सुखी रहा? कोई सुखी नहीं रह सकता। इसलिए संतान से मत देखो, भजन करो, उससे सुखी रह सकते हो। इस जन्म में भगवान का भजन हो गया तो बस काम बन गया, और नहीं तो संसार में आसक्त रहने से वो कोई कबूतर की गति होती है हम लोगों की। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। इस प्रकार से और भी लीला चरित्र सब वर्णन करके अब हम दशम स्कंध में आ रहे हैं। थोड़ा सा दशम स्कंध के संबंध में स्पर्श करूंगा। एक कीर्तन छोटा सा, बहुत छोटा सा कीर्तन की। इसके बाद में सुखदेव गोस्वामी जी समस्त अवतारों का, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, यहाँ तक कि राम इत्यादि अवतारों का वर्णन किया। राम में विचित्र राम की लीलाओं का वर्णन किया। अभी वो आरंभ करने से बहुत ही हृदय ग्राह्य होने पर भी हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए उसको अभी यहाँ के लिए छोड़ दिया। तो कृष्णचंद्र जी का जन्म हुआ। कैसे जन्म हुआ आप लोग साधारण रूप में जानते हैं। देवकी और वसुदेव जी का को कंस ने जेल में बंद कर दिया कि इसका 8वां गर्भ होने से उसको मार डालूंगा, क्योंकि 8वें गर्भ से हमें भय है। वो कृष्ण ये सारे विश्व को 1 सेकंड के अंदर में ध्वंस कर सकते हैं, फिर उसकी सृष्टि कर सकते हैं। एक साथ में 10 लाख जन्म भी, 10 लाख रूप भी धारण कर सकते हैं। करोड़ों गोपियों के साथ में कृष्ण करोड़ों बन गए। और द्वारका में जब रानियों से शादी की तो 16,108 रानियों के साथ में एक साथ में विवाह किया। अलग अलग घरों में कहीं विवाह हो रहा है, कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं हवन हो रहा है, कहीं दान कर रहे हैं, कोई कुछ, कितने लाखों रूपों में एक साथ वो सब कुछ करने में समर्थ है। इसलिए देवकी के गर्भ से आंशिक रूप में नारायण के रूप में और यशोदा जी के गर्भ से गोकुल में परिपूर्ण 16 कलाओं से कृष्ण प्रकट हुए। यहां शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज होकर बड़े बड़े सोने के अलंकार धारण कर, सिर पर मुकुट सोने का धारण कर यहां पर जन्म लिए, बड़े बड़े केश। और गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से छोटे से बच्चे कुछ नहीं, नंग धड़ंग होकर के जन्मे। वहां पर देवकी वसुदेव जी हाथ जोड़ करके स्तव स्तुति करने लगे, इसलिए वहां पर पुत्र के रूप में नहीं पैदा हुए। वहां पर कैसे हुए? जैसे नृसिंह जी खंभ से पैदा हो गया, वैसे ही उनके गर्भ से निकल करके और चतुर्भुज रूप 16 वर्ष का रूप धारण कर लिया। इसलिए वो नारायण तत्व है, ऐश्वर्य वाले, किसी के पुत्र नहीं होते है? और इधर में यशोदा जी के घर में उनके प्रेम से उनके लाला बन करके, छोटे से बच्चे बन करके, केश नहीं, कुछ नहीं, और नाड़ी उनकी जुड़ी हुई यशोदा जैसे, प्रसव के बाद में बच्चे का कुछ संबंध, नाड़ी इत्यादि होता है, नाड़ी छेद होता है, उसको स्नान कराया जाता है, दान पुण्य इत्यादि होते हैं। मथुरा में ये नाड़ी छेदन का कार्य नहीं हुआ, जातकरण ये सब कुछ नहीं हुए। और गोकुल में क्या हुआ? गोकुल में बधाई बजी और चारों तरफ में वो हल्ला हो गया, जो यशोदा मैया को पुत्र उत्पन्न हुआ, नाड़ी जुड़ी हुई। फिर वो नाड़ी छेदन करने वाली होती है, वो आकर के नाड़ी छेदन किया, उसको दान दिया, ब्राह्मणों को दान दिया, लाखों गायें दान कर दी, जो कुछ घर में था सब नंद बाबा ने दान कर दिया। ये महोत्सव वहां पर नहीं हुआ। उन्होंने मन ही मन में ये कहा कि हमको पुत्र हुआ, हम 30,000 कितने 20,000 हम गाय दान करेंगे, बस मनी मन में दान नहीं कर सके। इसलिए पूर्ण रूप में जसोदा मैया के पुत्र हैं और आंशिक रूप में किनके पुत्र हैं, देवकी बा, उनके भी पुत्र हैं किंतु आंशिक रूप में। कैसे आंशिक रूप में? सब समय पुत्र नहीं समझते वो लोग, और जसोदा जी सब समय पुत्र समझते हैं। कैसे नहीं समझते? जब चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट तो हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभो हमारे संकटों को दूर कीजिए। और तरह तरह से तो अपने बेटे की कोई स्तुति करता है नहीं, इसलिए स्तुति करने बेटा है मेरा ये भूल गए। और जसोदा जी को विश्व रूप दिखलाया तो उनका प्रेम शिथिल नहीं हुआ। उन्हें सोचा इसको जादू किसी ने कर दिया, कोई टोना कर दिया, कुछ कुछ हो गया। और आंख मल मल के देख लीजिए बच्चे को, क्या भूत लग गया, प्रेत लग गया, क्या हुआ। ब्राह्मणों को बुलाया। एक दिन कृष्ण खेल रहे थे और खेलते खेलते उन्होंने जम्भाई ऐसे की, जम्भाई थोड़ी तो उसमें देखा क्या, जसोदा मैया ने सारा विश्व ब्रह्मांड, उसमें शंकर ब्रह्मा रुद्र इत्यादि करोड़ों देवता उसमें है, और सारा पृथ्वी सारा विश्व ब्रह्मांड इसके मुख में है। कहिए ये कैसे हो गया? देखने लगी, देखा हाथ लगा करके, देखा ठीक तो ऐसा दिख रहा है, और भूत लग गया इसको, कोई जादू कर दिया, किसी की आंख लग गई, ऐसा कर रहे। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया तत्क्षणात, गर्गाचार्य जी को, बड़े ज्योतिर्विद है, और बुला करके कहा हमारे बच्चे को क्या हो गया। हाँ मैं देखता हूँ इसका कुछ 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 गड़बड़ी है, ऐसा करो जो 16,000 या 20,000 गायों का दान करो और सोना दान करो, और गाय ले आओ काली सी गाय, और काली गाय ले आए उसका गोबर और उसका मूत्र मिला करके पानी बनाया गया, और कहा जी कृष्ण को इससे काली गाय की पूंछ से इसको लगा करके सारे अंगों में लगाओ, और इसको जमुना के जल से फिर स्नान करो, तो ये अब ये भूत इसका दूर हो गया। ऐसे जसोदा जी स्नेह करते, उनको कभी ऐसा नहीं होता हमारा बेटा नहीं है, चाहे चतुर्भुज रूप में खड़े हो जाएं, खड़ा हो ही नहीं सकते। और उधर देवकी का, वसुदेव जी का, अभी नहीं और भी कितने कुछ समय आए, जब कृष्ण लौट करके मथुरा में आए, कंस को मारा, उस समय हाथ जोड़ करके कृष्ण और बलदेव उनके चरणों में गिर गए, और वो हाथ जोड़ करके स्तुति कर, कंस को मारना सहज नहीं है, इतने दुष्टों को संहार करना अकेले, इसलिए आप भगवान हैं, और जन्म की बात आई याद आई चतुर्भुज नारायण। इसलिए रामचंद्र जी के लिए भी ऐसा है, जसोदा जी का कभी कभी स्नेह पुत्र का वो दूर हो जाता है, कैसे, जबकि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला हितकारी रूप चतुर्भुज है ने, चार भुजाएं उन्होंने धारण की, शंख चक्र गदा पद्मा, और देवता सब लोग उनको जय जय ध्वनि दे रहे हैं। जसोदा जी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, कौशल्या उनका भी यहाँ पर पुत्र स्नेह उस समय नहीं रहा, ये तो भगवान है, किंतु जसोदा जी को जो करे जैसा भी रूप दिखाए वो उनका वात्सल्य टस से मस नहीं होगा, इसलिए इसको कहते हैं माधुर्य भाव। उनका कभी होगा ही नहीं, नंद बाबा को नहीं हुआ, वो यदि मुख में 1,000 रूप दिखलाए तो कहे हमारी जूती लैया तो जूती बना दे, उनके सिर पर रख देंगे, और वो दौड़ते हुए नाचते हुए नंगे आएंगे और पिताजी के गोदी में। और जसोदा मैया क्या करेगी आप जानते हैं ना, वो बांध दिया ना उनको अच्छी तरह से कमर में, और बांध करके और उनको पीछे से दौड़ करके उसको पकड़ लिया, अच्छा ये जो बतलाया इटा बोलना मामी थोड़ा सा बंगला में भी बोल दे। तो कृष्ण आंशिक रूपे थे देवकी पुत्र छिलेन वसुदेवे, पूर्ण रूपे ना ओखाने शंख चक्र गदा पद्म धारण कर दिए प्रकट होलेन, कारो बेटा 16 वर्ष धारण करे और ओतो तो लंबा घुघरारो चूल लिए, आर शंख चक्र गदा पद्म सोनार आभूषण पड़े, আর কি কি মালা ও কস্তু মণি ইত্যাদি ধারণ করকে কিসি কা বেটা আতা হ্যাঁ তো হতা নেই এসলে ও নারায়ণ থে নারায়ণ কে রূপ মে আয়ে আর কবি কবি আর কবি হ্যাঁ কখনো কখনো যা পর অধিক সংখ্যা কে লোক বঙ্গাল মে রাতে হ্যাঁ না তো ওয়া পর হিন্দি মনকো নেই আতি অঙ্গ্রেজি নেই আতি ভুল জাতা জ্যাসা শ্রোতা হ্যায় ব্যসাই হো যা তখন এনি দেবকীর তিনি পূর্ণ পুত্র নন আংশিক পুত্র আর যশোদা দেবীর পূর্ণ পুত্র তার গর্ভেতে এসেছেন আট মাসের গর্ভ ছিল আর তারপরে ছোট বাচ্চা যেরকম হয় চুল টুল কুচ্ছু নাই নঙ্গ ধড়ঙ্গ আম্মার সঙ্গে তার ঝিল্লির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে সে তো তোমরা জানো আর সেখানেতে ওই নাপিতানি নাকি কি থাকে ওরা সব এসে নাড়ি কাটে আর পয়সা টসা লে ব্রাহ্মণরা এসে আশীর্বাদ করে তাদের স্নান করানো হয় মা সাত দিন আট দিন দশ দিন কি এগারো দিন বাহিরে যাবে না ওই ওর সঙ্গে থাকবে ওখানে এইটি মথুরাতে হয় নাই কোথা হলো গোকুলেতে হলো গোকুলেতে বাধাই বাজলো আর ওখানে জাতকর্ম হলো ওখানে এই সব কিছু হলো গাভীত ইত্যাদি সব দান হলো ওখানে কিছু হয় নাই এই জন্য তিনি শুধু মথুরার ব্রাহ্মণ আর মথুরার লোক বলতে পারে যে কৃষ্ণ দেবকী গর্ভে এসেছে ব্রজবাসী কেউ বলতে পারে না বলবে ওরা তো দেখলো যে সে এখানে জন্ম হয়েছে নিজে চক্ষুতে দেখে ওরা সবগুলি বাধাই দিতে গিয়েছে এই জন্য ওখানকার আমরা হচ্ছে ব্রজের ব্রজবাসী লোক আমরা বিশ্বাস করি না যে কৃষ্ণ তিনি দেবকী আর বসুদেবের পুত্র আর তোমাদের যে যে ভাবনা তাহলে তোমরা মথুরাবাসী তোমরাও আমার সঙ্গে ব্রজবাসী হো মথুরা না মথুরা মে ভক্তি উতনা রস নেই ব্রজ মে রস হ্যাঁ মথুরাতে রস নাই ওখানে কৃষ্ণ বাল্য লীলা করেন নাই কোনো দুধ ওখানে মায়ের স্তন থেকে দুধ খান নাই কোনো লীলা করেছেন বাল্য লীলা কিছুই করেন নাই আর গোকুলেতে কত রকমের বাল্য লীলা ইত্যাদি করেছেন এই মধুর লীলা ওখানে আছে যা হোক এইরকম হতে ওখানে দামোদর লীলা করেছেন যশোদামা তাকে বেঁধে দিয়েছে ওখল থেকে আর লাঠি নিয়ে বলছে বেঁধ নিয়ে মারবো তোমাকে মারবো আর কৃষ্ণ কি করছেন ওই হাত ছাড়িয়ে দিয়ে নিচে যাচ্ছেন আর যশোদামা তার হাত ধরেছেন ধরে নিয়ে আবার নিয়ে আসেন মারি কাকে পরব্রহ্মকে কে পরব্রহ্ম ঈশ্বর ঈশ্বর যে এই শঙ্করজি ব্রহ্মাজি এই সব তাহার দাস দাসী দুর্গা কালী সব তাহার দাস দাসী এ সব দেখ উনকি শক্তি হ্যাঁ রাধাজি কি অংশ হ্যাঁ ইয়ে দুর্গাজি জগত কো কন্ট্রোল করনে কে লিয়ে দুর্গা রূপ ধারণ কিয়া হ্যায় আর গলে মে ক্যা হ্যায় মুন্ডমালা হ্যায় ইহা না মুন্ডমালা মুন্ডমালা কিস লিয়ে ধারণ কিয়া কিসকা গলা হ্যায় উসমে ত্রিপুণ্ড দেখো যে লগা হোগা যে ত্রিপুণ্ড ধারণ করকে কাতে হ্যায় শিব অহম মে শিব হুঁ উনকা গলা কাট লেতি হ্যায় তুম হামারা পতি হ্যায় তুমারা গলা কাট লে খবরদার শিব অহম মন্ত্র মত করনা তো ক্যা কহ রা থা হ্যাঁ ডরাতি হ্যাঁ ধমকাতি হ্যাঁ কৌশল্যাজি কবি ধমকায়া নই ধমকা উসমে মর্যাদা সম্পন্ন উনকো কই নই ধমক কই ভি নই ধমকা সকতা আর ইধর মে কৃষ্ণ কো যশোদাজি ধমকা রহি হ্যায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কে অখিল প্রভু হ্যায় ইয়ে ঈশ্বরো কে ঈশ্বর আর উনকো ধমকা রহি হ্যায় আর কৃষ্ণ রো রহে মৈয়া মুঝে মত মার মৈয়া মুঝে মত মার কাজে তুম ফির চোরি করেগা মৈয়া কান পকড়তা হুঁ আব চোরি নহি করুঙ্গা মক্খন চোরায়েগা নহি মৈয়া আব নহি চোরাউঙ্গা দেখো তো প্রভু ব্রহ্মা কেসে উনকি লীলা ইসলিয়ে যশোদা কে পুত্র হ্যায় ইনি কে গর্ভ সে উনকা জন্ম হুয়া ইহাঁ পর ইয়ে সব লীলায় কি মথুরা কে লিয়ে সম্ভব হ্যায় এই সব লীলা মথুরা জন্য ওখানে অযোধ্যাতে এই দিকে ওদের কোথাও এই সব লীলা সম্ভব পর না যে উহা লীলা করতে হ্যাঁ এইসবগুলি লীলা করেছেন, এমনকি একদিন মাটি খেয়েছেন। কৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ড ঘাটেতে ছেলেদের সঙ্গে নঙ্গে ধড়ঙ্গ হয়ে ওখানে গিয়েছেন, মাটি খেয়েছেন, মাটি খায়া কৃষ্ণ নে উহা, মাটি খায়া তো বচ্চা নে কহ দিয়া বলদেবজিকে, বলদেবজিকে বলে দিল এইটা মাটি খেয়েছে। সব ছেলেরা বলে আচ্ছা যশোদা মার কাছে বলবো, তুমি মাটি খাও। যশোদা দৌড় করকে আই, আরে তুমি মাটি খায়া তো নাই মাইয়া, মানে তো মাটি নেই খাই, নেই খাই তো ইয়ে ঝুট কর রে, দেখে এসে আঙ্গুলি লাগা করকে উনকা মাখ ফাড় দিয়া, এসে কিয়া দিখা রে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উনকে মুখ, ফির দেখ করকে স্তম্ভিত রহ গই, ফির ব্রাহ্মণ কো বুলাযা, ফির ঝড়বারা। কিন্তু ইয়ে নেই হুয়া যে হামারা পুত্র নেই হ্যায় ইয়ে ভগবান হ্যায়, ইয়ে নেই হুয়া, ইয়ে কবি সম্ভব নেই। ইসলিয়ে ইনকা মধুর লীলায়ে যে হতি হ্যায় ব্রজ মে হতি হ্যায়, ইয়াহ তক কি বাঁধ দিয়া উনকো উখল মে বাঁধ দিয়া, আর ইয়ে নটখট ক্যা কিয়ে সখাও কো সাথ মে লেকর কে ওহি পর ক্যা থে ইন্দ্র কে নলকুবর মনি গৃহ ইনকা উদ্ধার কিয়া। বড়ি বিচিত্র ইনকি লীলা হ্যায়, জো সুনেগা উহাঁ পর রোয়েগা, এসে বিচিত্র, অব ইতনা সময় নেই, তো এসি এসি লীলায় वहां पर कर रहे हैं। कल थोड़ी सी मैं आप लोगों को सुना दूंगा कृष्ण के कैसे मधुर चरित्र है। राम की लीला ऐसी है लाइन लाइन में आपको आंसू बहेंगे, बहुत करुणात्मक है। और वहां से उठ करके चले जाओगे फिर कोई बात नहीं, और कृष्ण का एक बार यदि आंसू आ गया फिर वो जीवन भर नहीं सूखेगा। बहुत विचित्र बात, इसलिए कृष्ण से स्नेह मत करो, वृंदावन में जाओ मत जाना कभी, खबरदार वृंदावन में मत जाओ। यदि घर वालों से प्रेम है, बच्चों से स्नेह है और ये सब में मोह है तो और सुख से उनके साथ में जीवन निर्वाह करना चाहते हो बड़े प्रेम के साथ में, खबरदार वृंदावन मत जाना, निमंत्रण दंड मैं निमंत्रण दे रहा हूं ना, मत जाना। अच्छा यदि वृंदावन कभी चला गया तो केसी घाट पर मत जाना, और केसी घाट में किसी प्रकार से पहुंच गए तो वहां पर गोविंद जी का मंदिर है, उसमें खबरदार मत जाइयो, क्या होगा जहां उनकी मूर्ति आएगी घर बार बिसर जाएगा, भूल जाएगा, फिर घर न उठना, फिर तो वृंदावन की बस हो गई। ऐसा उनका सुंदर रूप है, जो उनका रूप एक बार देख लेता है वो कभी घर नहीं। इसलिए है भले मनुष्यों यदि घर में प्रेम है, स्त्री बच्चों के प्रति, पति के प्रति स्नेह है और ये सब और अच्छी तरह से प्रेम पूर्वक रहना चाहते हो तो खबरदार वृंदावन में मत जाना, नहीं तो फिर लौटना नहीं होगा। क्या कर रहे हैं उल्टा, जरूर जाओ, जीवन का यही प्रथम कर्तव्य है, ये तो छूटेगा ही। इसलिए बहुत मधुर मधुर कहानियां हैं और लाखों, कभी कभी लड्डू के लिए दोनों भाइयों को लड़ा देती हैं गोपियां, कहते हैं ये लड्डू देंगी जो जीत जाएगा उसको, कुछ गोपियां उनका पक्ष ले लेती है, बोल वाह ये बहुत भलवान है वीर है, और कुछ कृष्ण का पक्ष लेकर के कहते हैं ये जरूर उसको हरा देगा। दोनों नंगे अभी मैया ने यहां पर बांध दिया है क्या, मोर मोर का पंख बांध दिया, अद्भुत कृष्ण का रूप, बलदेव का भी अद्भुत रूप, और दोनों को लड़ा देती हैं लड्डू के मारे, जैसे जो जीतेगा देंगे, और दोनों परस्पर लड़ने लगते हैं, ताल ठोक करके लड़ते हैं। इस तरह से गोपियां उनको छाछ पर, एक छाछ के ऊपर इतना, छाछ माने क्या मट्ठा, उसके ऊपर में कितना दर तक उनको क्या क्या, उनको पोपेट की भांति नचाती हैं प्रेम से। कोटि कोटि जन्मों की उनकी मैया और ये है, साधारण नहीं, इसलिए ब्रज की लीला है बड़ी मधुर, इसे आगे तो और मधुर। जहां पर कृष्ण ने रास किया, जहां पर उद्धव ब्रज में गए, उसके बाद में और लीलाएं बड़े मधुर है, सुनने से चित्त आनंद से भर जाता है, उसका स्मरण करने से, वहां वृंदावन में जाने से ये सब दर्शन करने की इच्छा होती है, उसको भक्ति होती है। तो आज यहीं तक मैं समाप्त करता हूँ, कल हम थोड़ा सा इसका चस्का तो आप लोगों को देने की चेष्टा करें। Gaur Premanande.
Thus ends the class on the 20th of May in Houston in Hindi, PM. Hare Krishna.
Tasmai Shri Gurave Namah. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyayvacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. Namo Mahabhadanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishe Namah. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Vadaya Tadavaktaya. Yang prabrajantam anupetam apeta krityam dvaipayano virahakataraya juhava putreti tanmaitaya tarvo bhinedu tang sarvabhutaridayam munimanatosmi tavai vasmi najivami tvayavina iti vijnaye radhe tang naimam charanantike. भगवान की कृपा से, गुरुवर्गों की कृपा से दुर्गाबाड़ी में हम लोगों का श्रीमद् भागवत प्रवचन 6 दिन तक बड़े निर्विघ्न रूप से चला। आज 7वां दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। मैं भली भांति पूर्ण रूप से व्याख्या तो नहीं कर सका, कुछ लीलाओं को मैंने लिया। भविष्यत में यदि समय होगा तो मैं अच्छी तरह से और भी करने की चेष्टा करूंगा। इसमें हमने संक्षेप में 9 स्कंधों का तात्पर्य आप लोगों को बतलाया। कल 10वें स्कंध में हमने प्रवेश किया है, तो आज उसके संबंध में कुछ कुछ जो गंभीर रहस्य हैं हम बतलाने की चेष्टा करेंगे। आप लोग उसको खूब सावधानी से अपने हृदय में धारण करने के लिए चेष्टा करेंगे। तो कृष्ण ने मथुरा में और साथ ही साथ में गोकुल में जन्म लिया। कंस ने शक किया कि शायद 8वां गर्भ किसी तरह से छल बल से गोकुल में चला गया है, इसलिए पुतना को उसको मारने के लिए भेजा। कृष्ण ने कैसे मारा ये लीला तो आप लोग जानते हैं। ये रहस्य क्या है इस पर मैं अधिक बतलाते हुए संक्षेप में चलूंगा। पूत ना, जिसको बेटिया नहीं, और पूत ना जो अपवित्र सदा रहती है, सब समय जो अपवित्र होता है वो भगवान का भजन नहीं कर सकता। इसलिए भक्तों को उचित है कि पवित्र रहें। पवित्रता 2 प्रकार से होती है, एक अंतः पवित्रता और एक बाहर की पवित्रता। केवल स्नान करने से पवित्रता नहीं होती, विचारों को शुद्ध रखना ये पवित्रता है, और उससे भी पवित्रता है यदि भगवत भक्ति सचमुच में हो अंदर, तो वो हृदय पवित्र हो सकता है, भगवान उसके अंदर में आ सकते हैं। और जहां पर अपवित्रता है वहां पर भगवान कभी नहीं आ सकते। इसलिए भगवान अपने भक्तों की अपवित्रता को पहले दूर करते हैं, इसलिए पुतना को मारा। पुतना को बेटा नहीं तो दूध कहां से होगा ना? और सब समय छोटे छोटे बच्चों को कच्चे चबा जाती थी, उसका रक्तपान करती थी, ऐसी वो दुष्ट थी राक्षसी। कृष्ण ने उसका स्तनपान किया, विष ले लिए, उसके प्राण भी खींच लिए और उसे परम पवित्र बना करके गोलोक में भेज दिया अपनी माता का स्थान दे करके। ऐसे बड़े दयालु हैं कृष्ण। भूल से भी यदि कोई उनका शरण ले ले कृष्ण का, तो वो पवित्रता को दूर कर सकते हैं। किंतु आज जगत अधिकांश लोग, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मांसाहारी नहीं है, अधिक लोग मांसाहारी हैं। यहां तक कि भारतीय लोग भी यहां आकर के अब गोमांस खाने लग गए हैं, बीफ खाते हैं, उसका बिजनेस भी करने लग गए। वो इसका परिणाम नहीं जानते हैं कि अंत में क्या होगा, उनके भी मांस ऐसे ही खाए जाएंगे, लोग दूसरे जानवर खाएंगे। इसलिए ये सबसे बड़ी अपवित्रता है। इसलिए मद्यमांस सब कुछ छोड़ छाड़ करके भगवान ने खाने पीने के लिए संसार में बहुत कुछ दिया है। विशेष करे बंगाली रा बिना माछ खेले तारा थकते पड़े ना, माछ चाहिए, तारा भगवान के चाहे ना तारा माछ का चाहिए। माछ माने की एमन कोनो जिनिस ना जे माछ ना खाए ना? ओ, किसी को टीबी कैंसर हुआ ऐसे कर करके खांस करके जो बलगम निकलेगा वो फेंक देगा तो कौन खाएगी? मछली तुरंत खा लेगी। और ऐसे मछली को जो खाते हैं यही रकम मांस धारा खाए, यही बंगाली जाति, आहा बड़ी कठिन जिनिस। यदि बंगाली जाति एटा यदि छेड़े दे परम वैष्णव हो गए, जरा माँ आछे तर माछ खाबेन ना। माछ खा ले जानेन की होय, माछरा मरवार समय ते अभिसंपाद दे जे जाओ तुम्हारा विधवा होए जाओ। ए जने बांग्लादेश ते अधिक विधवा, सबसे बेसी यदि भारतवर्ष देखा जाए बांग्ला ते विधवा। क्या हमने कहा नहीं समझ में आया कि आया? वी शुड नॉट टेक फिश, अदरवाइज दिस यू आर कटिंग देम लाइक ए बंगाली। एट द टाइम ऑफ डेथ दे विल कॉस यू। वो जीवित मछली को ऐसे ऐसे छील देती हैं और तेल में दे देंगी, छटपट करती हुई भारी निष्ठुरता। इसीलिए वो मरते समय अभिशाप देते जाओ तुम विधवा हो जाओ, इसलिए बंगाल में अधिक विधवा हैं। इसलिए भगवान ने खाने के लिए बहुत कुछ दिया, भगवान खबर जन प्रचुर जिनिस दिए छे, प्रचुर शुद्ध पवित्र जिनिस पाओ, तुम्हारे मन ठीक थाकबे, तुम्हारे स्वामीओ जीवित थाकबे और तुम्हारा सब प्रकार सुखे थाकबे। एजन माछ कखनो खावा उचित ना, मांस खेले तो विशेष नहीं पाप होबे, किंतु माछ ता सबसे भयंकर। अब बंगाली रा प्राय माछ मांस खाए ना प्राय, अभी वही माछ सही खाए और बोले तार सात्विक जल थोड़ी मत खाओ, कोई किसी प्रकार का मांस मत खाओ, नहीं तो भगवान हृदय में नहीं आएंगे। तुम जितना पूजा पाठ करेगी नहीं खाएंगे। शकट भंग, शक्तासुर को उन्होंने मारा। शकट क्या है? सकट माने बैलगाड़ी या कोई गाड़ी, जैसे गाड़ी पर माल लादते हैं रखते हैं, वैसे ही जो तर्क शास्त्रों का विद्वता सब का अभिमान लेकर के जो चलते हैं और भगवान का भजन नहीं करते, वो लोग हैं सकटासुर। व्हाट आई टोल्ड, समझा? तर्क शास्त्र के द्वारा भगवान को उड़ा देना चाहते हैं, भगवान नहीं है कुछ, हम ही लोग जो कुछ अपने कर्म से सब कुछ करते हैं, तो तुम्हारी मृत्यु क्यों हो जाती है तुम ही यदि सब कुछ है, बिलबिलाते और रोते क्यों है, फिर दुर्गा जी के पास में उपहार क्यों देने आते हो? इसलिए भगवान उनको समाप्त करते हैं और भक्ति की रक्षा करते हैं। भगवान ने बुद्धि दिया है, देख करके विचार करो, ये सब कहां से कैसे सृष्टि आई, ये सबको बनाने वाले प्रभु हैं। हमारे अंदर में हमारे पिता माता ने जन्म दिया, ये तो निमित्त कारण है, मूल कारण क्या है, प्रभु हैं। बहुत से स्त्रियों को बेटे क्यों नहीं हो जाते, और बूढ़े होने पर वही पति और स्त्री रहते हैं, फिर बेटा बेटी क्यों नहीं होते? इसलिए मूल में प्रभु हैं, इसलिए प्रभु को मान करके चलो। तो ऐसे सकटासुर जो तर्क के द्वारा भगवान को उड़ा देना चाहते हैं, ऐसे ये सकटासुर है, उनका संग नहीं करना चाहिए। जब वृंदावन में आए तो उन्होंने बकासुर का वध किया, बगला भगत, वो असुर था बक, कपट था, एक पैर पर खड़े होकर के नदी में सरोवर में खड़े हो जाते हैं, और जहां मछली देखा बस झट से ले लेते हैं। इसलिए कपटता को दूर रखना चाहिए, विशेष करके गुरु से और भक्तों से, परिवार में कपटता नहीं रखनी चाहिए, कपटता को बहुत दूर रखो यदि भजन करना चाहते। अंतर और बाहर में दोनों एक समान होना चाहिए, किसी से छल छंद मत करो, विशेष करके अपने जो गुरु जैसे हैं, माता हैं, पिता हैं, परिवार के जन हैं, उनसे छल छंद मत करो, किसी से भी मत करो। आजकल ये कलयुग, वो सभी लोग, एक बच्चा भी अपनी मैया से छिपाता है, बाप भी अपने बेटे से छिपाता है, ये कलयुग है। तो यही है बकासुर, बकासुर को मारने पर तब भक्ति होती है, तत् कपटता का को सब प्रकार से छोड़ो, कपट व्यवहार रख देना, अंतरे बाहिरे सम व्यवहार, अमानी मानो दो, सब समय अपने बड़ों का सम्मान करो, विशेष करके जो भक्तिमान है ऐसे लोगों का जरूर सम्मान करो, तब तुम जीवन में सुखी हो सकते हो। और सब में सम व्यवहार हो, ये अपना पराया मरने के समय कहां चला जाता है, रहता है कुछ? इसलिए अपना पराया न मान करके सबके सुख के लिए, जैसे पेड़ अपना पराया नहीं मानता, वो अपना छाल, अपना फल, मूल, लकड़ी, छाया, बिना किसी भेदभाव को सबके लिए होता है। इसलिए महापुरुष लोग होते हैं, भक्त लोग होते हैं, सबके लिए वो अपना जीवन धारण करते हैं, अपने लिए नहीं, सबके लिए करते हैं। इसलिए सबके प्रति सम व्यवहार, ये सब शिक्षाएं हैं इस कृष्ण लीला के अंतर्गत में। जो भागवत सुन करके भी ऐसे नहीं होते, स्वार्थी होते हैं, अपने अपने में ही स्वार्थ में लगे रहते हैं, वो बड़े दुराचारी होते हैं। इसलिए सबके प्रति समव्यवहार रख करके दूसरों को सम्मान दो और अपने को कैसा समझो, मैं किसी सम्मान योग्य नहीं हूं, इस प्रकार से चलो तो भगवत भक्ति हो सकती है और फिर जीवन में सुखी हो सकते हो, अन्यथा नहीं हो सकते। अघासुर का वध किया माने क्या? पाप करना। पाप किसको कहते हैं? जो नहीं करना चाहिए, जो अपने लिए दूसरों के लिए हानिकारक है, वो पाप है। सभी चीजें पाप है। तुम यदि किसी की जीवन नहीं दे सकते तो उसे मारने का अधिकार तुमको नहीं है। किसी प्राणी को तुम जन्म नहीं दे सकते, एक घास को जन्म नहीं दे सकते, तो उनको मारना भी उचित नहीं। किंतु घास को हटा करके वहां पर गेहूं और ये सब देते हैं और उपकार की चीज है ना, तो ये तो कर सकते हो। इसलिए पाप नहीं करना चाहिए। किसी भी प्राणी को मारना बड़ा भारी पाप है। उनमें से भी जो उपकारी जो जीव हैं, जैसे गाय, मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन ईसाई का कोई भेदभाव नहीं रख करके सबको अपना दूध दे करके पालन करती है, वो मैया है, उसके रोम रोम में देवता वास करते हैं, इसलिए उनको मारना उचित नहीं। बकरी, वो भी मां है, छोटी मैया, वो भी दूसरों को दूध देती है बकरी। छागल, लोग ताके खूब सरल मने करे, सीधा मने करे, वही छागलेर बलि दे, छागल खाए, पाठा खाए, यही सब। जरा कुछ करते पारे ना, जरा निरीह जानवर उधर के मेरे खाए, मछली निरीह, उसके ऊपर संसार के जितने जीव हैं सभी उसके ऊपर लपकते हैं। बड़ी बड़ी मछलियां भी छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है, मनुष्य भी, सब लोग। मानो वो खेती करते हैं मछली का, अब इंडिया में भी मछली की खेती हो रही है। तो अघासुर का वध, पाप मत करो, पाप करने से चित्त तुम्हारा खराब हो जाएगा, फिर तुम जीवन में सुखी नहीं रह सकते। पापी व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। एक राजा थे सुरथ नाम के, उन्होंने यज्ञ में करोड़ों जीवों का वध किया, बलि दी, विशेष करके बकरी और भेड़ और ऐसे चीज जानवरों का। जबकि वो स्वर्ग जाने लगे तो सभी वहीं पर उपस्थित हुए और उनको पकड़ करके बोले, पीछे स्वर्ग में जाना, पहले इसका बदला जो है वो हम लोग लेंगे तब। और वही तलवार लेकर के खड़े हो गए उनको मारने के लिए। एक एक जन्म में एक एक मारेगा, करोड़ों करोड़ों वध किया, नहीं जा सके। इसलिए पाप से बचना चाहिए। झूठ बोलना क्या है? पाप है। आजकल कहीं जैसे कलयुग में बिना झूठ बोले कुछ चलता नहीं है, कोई कारोबार नहीं हो सकता, ये झूठ बात है। अभी भी कोई शुद्ध चीज की दुकान, शुद्ध घी की दुकान करो और कहो और उसको ठीक 100% बनाने की चेष्टा करो शुद्ध, तुम्हारा घी बिकेगा अधिक मूल्य में, किंतु विश्वास नहीं। इंडिया में उसमें क्या क्या मिलावट करते हैं, चर्बी और क्या क्या, और मरते हैं पापों से। इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। माता पिता का जो आदर नहीं करता, ये क्या है? ये भी पाप है। जो पुरुष अपनी पत्नी को आदर नहीं देता, सम्मान नहीं देता, वो भी पाप है। और जो पत्नी अपने पति का सम्मान नहीं करती, वो क्या है? वो भी पाप है। धर्मतः उसको ग्रहण किया है पति ने, वो तुम्हारी दासी के रूप में नहीं आई, तुम्हारी अर्धांगनी के रूप में आई, तुम्हारा आधा बन करके अंग। उसको नौकरानी मत समझो, उसको यथा योग्य आदर दो। और स्त्री का भी कर्तव्य है, उसने प्रतिज्ञा की आग की साक्षी रख करके देवताओं और ब्राह्मण समाज की, हम इनकी सेवा करें, दोनों मिलकर के भगवान का भजन करेंगे। उस मंत्र में, विवाह के मंत्र में ये भी होता है, इसलिए अर्धांगनी या क्या धर्म पत्नी कहा जाता है, इस चीज को समझो। ये सब पाप है, इसको नहीं करना चाहिए। भगवान ने अघासुर का वध किया और तब फिर भक्ति बढ़ेगी, इसलिए हृदय में पाप मत लाओ, दूसरों का कोई भी चीज बिना उससे पूछे हुए मत लो, ये क्या है, ये भी चोरी है और अधर्म है, इन सब चीजों को ख्याल रखना चाहिए। एक समय ब्रह्मा जी ने देखा अघासुर को भी मार करके 8 बज गया, आज घड़ी बड़ी तेज चल रही है, क्या
मुझे 5 मिनट बाकी है,
देख रहा बड़ा समय जीवित रहा। ब्रह्मा जी ने देखा महापापी अघासुर और दोनों जबड़े आकाश पाताल में मिलाकर, एक नीचे वाला नीचे और ऊपर वाला ऊपर कर दिया, आकाश में मिला दिया और जीव को बाहर कर दिया लाल लाल जैसे मखमल हो, और सखा लोग आ रहे थे, देखा ये क्या है, ये पहाड़ कंदरा जैसा, ये नहीं समझ सके कि ये अघासुर है, कंस का भेजा हुआ दूत था, कृष्ण को निगल जाना, हम उसे मारने की चेष्टा करते हैं किंतु कोई भी जाकर के उसका संवाद देने नहीं आता, सब उधर ही रह जाता है, तुम जरूर मारना, तो मारने के लिए प्रतीक्षा कर रहा। अघासुर मतलब पाप अतला है ना, कलयुग पाप को भेज करके कृष्ण को भी, अर्थात तो भगवान नहीं है, ये विचार सबसे बड़ा भारी अघासुर है, भगवान है ही नहीं है, उसको भी निकल जाना चाहता है, किंतु भगवान को निकलना इतना सहज नहीं है, इसलिए भगवान के पहले जरा पीछे हो गए और उनके सखा लोग बछड़ों को लेकर के उत्प्रेक्षा करते हुए, अरे ये बड़ा भारी पहाड़ है या क्या है, अजगर जैसा दिखता है, किंतु ये नहीं समझते कि अजगर है, उन्होंने सोचा जी पहाड़ है, और बच्चे लोग घुसने जा रहे, कृष्ण ने उनको मना किया, अरे मत जाओ जरा पीछे थे, ठहर जाओ, किंतु उन्होंने वे ठहरे नहीं, भीतर में प्रवेश करे, कन्हैया तो है, जो भी होगा हम देख लेंगे, कन्हैया के बल पर घुस गए। जब घुस गए तो कृष्ण को बाध्य होकर, तब तक वो अपना जबड़ा बंद नहीं किया, खुला रखा जो कृष्ण भी आ जाए, तो कृष्ण ने देखा जी सब तो भीतर में चले गए, इसलिए वो भी भीतर में गए और उनके अंगों की गंध से वो सब लोग वहां पर जीवित हो गए। उसने साथ ही साथ में जबड़ा बंद कर दिया। कृष्ण ने क्या किया, जो लाल लोहे के गोले जैसे बनकर उसके गले में अटक गए, सांस इधर आए न उधर आए, रसगुल्ला की भांति लाल लाल आंखें लाल लाल रसगुल्ला के साथ निकल आई, और प्राण मुख से नहीं, यहां से फट गया और उससे प्राण निकल गए, और वायुमंडल में वो आकाश में उसकी आत्मा घूमती रही। फिर कृष्ण ने उसके मुख को उफाड़ करके और अपने तेज से सबको जीवित करके निकले बाहर। जो ही बाहर आए, घूमती हुई उसकी आत्मा प्रकाश ज्योति से कृष्ण के चरण में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा जी ने देखा महापापी ये अघासुर और कृष्ण को मारने के लिए ऐसा किया था और उसको भी उन्होंने मुक्ति दे दी, ये तो बड़े आश्चर्य की। मुक्ति माने क्या, संसार से आना जाने का जो दुख है, एंडलेस चेन ऑफ बर्थ एंड डेथ सफरिंग सारो, सबको समाप्त कर दिया। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, वाह ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, इतने पापी को भी उस पर ध्यान नहीं दिया और उसको ऐसी मुक्ति दे दी। उन्होंने सोचा जी मैं कुछ इनकी और भी मधुर लीलाओं को दर्शन कर जाता हूं, क्योंकि वो भक्त है ना, मधुर लीला कैसे देखूंगा, कैसे देखूंगा, तो कुछ करना चाहिए कुछ। उन्होंने बछड़ों को एक जगह छिपा दिया और उनके जो रक्षक हैं ग्वाल बाल उनको भी एक जगह पहाड़ की कंदरा में उनको छिपा दिया। कृष्ण देखे जी हमारे बछड़े किधर गए और सखा किधर गए, खोजने लगे। ओ ये ब्रह्मा जी की करतूत है, ये ब्रह्मा जी की करतूत नहीं बल्कि कृष्ण की ही करतूत है। क्यों? कृष्ण जब गोचारण करके आते थे तो जितनी गायें थी अपने बछड़े से कृष्ण को अधिक प्यार करती थी और चाहते थे जे कृष्ण हमारा यदि बेटा होता तो हम उसे दूध पिलाती, प्यार करती। कृष्ण ने देखा जिनकी मनोकामना पूर्ण करनी है, और ब्रज की जितनी माताएं थी अपने पुत्र से कृष्ण को अधिक प्यार कर रही हैं, वो सोच रही हैं जे कृष्ण हमारा बेटा होता तो अपनी गोदी में धारण कर उसे दूध पिलाती, प्यार करती, उसकी सेवा करती। और एक बात, ब्रज में जितनी सुकुमारी लड़कियां थीं जिनकी शादी नहीं हुई थी वो कृष्ण के अद्भुत इस रूप को देख करके मुग्ध होकर के सोचती थी यदि मेरी शादी हो तो कृष्ण के साथ ही मैं शादी हो, इनकी भी बड़ी इच्छा हुई। कृष्ण ने सोचा जे एक ही साथ इनकी सबकी इच्छा को पूर्ण करना है ना? कैसे करूं? जोग माया का उन्होंने ध्यान किया, जोग माया आकर के झट ब्रह्मा जी को मोहित कर दिया, और ब्रह्मा समझ रहे मैं ही कर रहा हूं, और मोहित होकर करा करके ब्रह्मा जी के द्वारा उन्होंने बछड़ों का हरण कर लिया पहले, और जब उसको ढूंढने के लिए सखा लोग इधर उधर जाने लगे तो उनको भी कंदर में बंद कर दिया। कृष्ण ने कहा जी मैं आ रहा हूं, मैं ढूंढ करके लाता हूं, तुम लोग बैठो, और बैठने में ही ब्रह्मा जी ने चुरा लिया। जब वो ढूंढ करके आया देखा तो बछड़े भी नहीं है और सखा भी नहीं। ठीक है, क्या किया, एक सेकेंड के अंदर में जितने ग्वाल बाल थे और जितने बछड़े थे उतने सब हो गए। ऐसा ही नहीं, उनकी लठिया कंबलिया, उनकी बंसी, उनके वेणु और सब चीजें थे सब हो, और ऐसा बन गए जो जिस लड़के का जैसा स्वभाव था, जैसी बोली थी, जैसा रूप था, गुण था, वो सब कुछ वैसा ही हो गया। और उसी रूप से कृष्ण अपने आप ब्रज में जाते, माताएं उनको दूध पिलाती, एक वर्ष तक पिलाती रही, क्योंकि चाही थी ना, कृष्ण उनके बेटे बन गए और गौओं के बछड़े बन गए जिनको वो अपना दूध पिलाती थी। दो तो काम हुआ, अब एक तीसरा रह गया। तीसरा रह गया क्या? जो लड़कियों की शादी वहां की गर्गाचार्य के द्वारा जोग माया ने घोषणा करा दिया उनके हृदय में प्रेरणा दे करके, ये वर्ष बड़ा शुभ है, जिस लड़की की शादी होगी वो कभी बूढ़ी नहीं होगी, धन धान्य से पूर्ण रहेगी, और उसका पति वो कभी भी विधवा नहीं हो सकती, और धन धान्य संपत्ति और सब प्रकार से वो पूर्ण रहेगी। घोषणा कर दिया। घोषणा होने के साथ ही साथ जिसकी लड़की अभी या लड़का भी गर्भ में है जिसको, तो वो दोनों आदमी पहले मिलजुल से ये ठीक कर लें, यदि हमारी लड़की होगी या तुम्हारा लड़का तो दोनों भी शादी कर देंगे, इसी वर्ष में हमने शादी आगे से कर दिया ना? इस तरह से सबकी शादी हुई। अब इस समय में किसके साथ में शादी हुई? वो कृष्ण बने हुए हैं ना ग्वाल बाल सब, बस सबके शादी वो कृष्ण से हो गई, और जिसकी नहीं हुई है वो भी भविष्य के लिए कृष्ण से ही शादी का संकल्प कर लिया, वो भी उन्हीं के साथ में हो गया। इसलिए ब्रज की जितनी भी लड़कियां उस समय थी छोटी बड़ी, सबकी शादी किसके साथ में हो गई? उस भगवान कृष्ण के साथ में हो गई। किस लिए ऐसा किया? ये भी बड़ी लीला परंपरा है, बहुत दिनों में कथा ये सब समाप्त होगी। ऐसी लीला उन्होंने की, और एक बरस जब पूरा हुआ तो बलदेव जी सोच रहे हैं भाई ये गायें अपने बछड़ों से भी अब पहले अपने बछड़ों से भी कृष्ण को अधिक प्यार करती थी, अब बराबर अपने बछड़े को और कृष्ण को बराबर, और माता भी पहले कृष्ण को अधिक और अपने बछड़ों को कम प्यार, अब बछड़ों अपने बच्चों को और कृष्ण को बराबर कर रही है। ऐसा क्यों? समझ में आया कि नहीं? पहले कृष्ण को अधिक प्यार करती थी गाय भी और गोपियां भी, अब बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि उसका बेटा भी तो कृष्ण ही है ना, और वो कृष्ण भी कृष्ण, इसलिए बराबर हो गया। इसलिए बलदेव जी ने देखा, अरे ये क्या बात है, ये कौन सी माया हुई? हमको माया ढकने वाली तो देवताओं की, असुरों की, गंधर्वों की कोई भी माया हमारे ऊपर में नहीं चल, ये किसकी माया है? जब उन्होंने ध्यान, अरे ये तो सब कृष्ण है, कृष्ण के निकट आए, अरे ये क्या हो रहा है, तुम्हारी एक मैया के जसोदा के दूध से पेट नहीं भरा तो लाखों गायों का बछड़ा बन करके दूध पी रहा है, और तब भी नहीं पेट भरा तो लाखों करोड़ों ग्वाल बालों का बन करके और अपनी लाखों लाखों मायाओं का पिता को तुम दूध पी रहा है तो भी तुम्हारा पेट नहीं भर रहा। तो कृष्ण ने मुस्कुरा दिया, सब समझ गए। बस उसी दिन एक वर्ष पूरा होने वाला है, ब्रह्मा जी आकर के उनके चरणों में गिरे। देखा जी, इधर भी बछड़े, इधर भी बछड़े, उधर भी ग्वाल बाल और बछड़े सो रहे हैं और इधर में कृष्ण के साथ में खेल रहे हैं। ये कौन है बछड़े? ध्यान लगा, देखा जितने बछड़े और ग्वाल बाल थे, चतुर्भुज मूर्ति धारण कर लिया, इधर भी, इधर भी है। अब तो देख करके चक्कर आ गए, उनके चरणों में गिरे। देखा जी, अकेले कृष्ण, बगल में बंसी दबाए हुए, हाथ में खाने का लेकर के, और चिंतित होकर के खोज रहे हैं, हमारे बछड़े किधर गए, हमारे बिछड़े किधर गए, हमारे सखा किधर गए। अब तो ब्रह्मा जी था न पा, तब फिर वो वंदना करने लगे। नौमिढ्यते अप्रबपुषे तड़ितंबराय गुंजावतं संपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्नास्रजे कवलबेत्र विशान वेणु पदपदे पशुपांग जाय। ओ पशुपांग जाय, पशुओं को, गायों को जो पालन करने वाला है ये नंद, उसके ये पुत्र हैं, उनके अंग से ये निकले हैं, आपको बार बार प्रणाम है। नौमिढ्यते अभ्र बपुषे, अभ्र जो मेघ वर्षा करने वाला होता, ऐसा सुंदर कृष्ण का रंग, सखा लोग उनके साथ में है, बांसुरी बजाते हुए और अपने चरणों से को पृथ्वी पर रखते हुए, जिसमें कि शंख चक्र और क्या क्या ये सब 19 प्रकार के चिन्ह हैं, उसमें पृथ्वी पर रख करके चले आ रहे हैं और वंदना करते करते अंत में बोले, ये ब्रज में किसी सौभाग्य से हमारा जन्म न हो, कहीं भी गोकुल में यदि जानवर के रूप में जन्म मेरा हो जाए, पेड़ लता गुल्म के रूप में जन्म हो जाए, यदि इसमें भी संभव नहीं है तो गोकुल में पत्थर रूप में भी हमारा जन्म हो जाए तो वहां की जमादारनी जो मैल कमाती है, टट्टी फेंकती है, वो शाम को लौट करके उस पर पैर रगड़ती है ना साफ करने के लिए, ऐसा पत्थर भी बन जाऊं जिसमें कि वहां की जमादारनी अपने पैरों को रगड़ करके साफ करती है, ऐसा पत्थर भी हमें ब्रज में हो जाता, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ब्रह्मा जी ऐसी प्रार्थना करते हैं। ब्रज में जल में लेना इतना सहज नहीं है, उनके भावों को पाना बड़ा भारी सहज नहीं है, इसलिए बार बार वो स्तौर और स्तुति करने लग गए। इसके बाद में कृष्ण उनके तरफ में देखा भी नहीं, उनके साथ में जो बच्चे थे अब कहने, अरे ये चौमा, चौमा कहां से आया? चौमा माने क्या? चार मुख वाला। अरे ये देखो तो चौमा आ गया, और कृष्ण उसकी स्तुति, और गोपियों की गाली सुनने के लिए उनके 10 कान खड़े किए रहते हैं। जो हमको गाली तो गए, चोर कहे, कोई लंपट कहे, कोई धूर्त कहे, कोई कुछ कहे, उसको सुनने के लिए ललचते रहते हैं। ब्रज के अतिरिक्त ऐसा कहने वाला कोई भी जन्म नहीं लिया कहीं भी, इसलिए अभी से यदि हम लोग ब्रज में जन्म लेने का एक रखे भाव, राधा कृष्ण की जोड़ी की सेवा करने की लालसा हमारे अंदर है, मरते समय ये इच्छा यदि रहे ना, जरूर हो जाएगा। सस्ता है किंतु होना बड़ा कठिन है। ये पहले जो बतलाया ना, अगासुर बकासुर शकटासुर पूतना, ये सबको दूर करो। अपने आप दूर नहीं होगा, गुरु की कृपा से। यदि गुरु सामर्थ्यमान है, भजन करने वाला है, अन्य से ऊपर का है, तो वो उसकी कृपा से ये हो जाएगा। तो ये सब कृष्ण की लीलाओं में। इसके बाद में रास हुआ, अब शेष करें रास हुआ। फिर रास होने के बाद में बीच में कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हो गए, गोपिया रोने लग गई विरह में। रोने पर एक साथ में सभी गंगा जमुना के किनारे पुलिन में रोने लगी और कीर्तन करने लगी। विशेष करके कलयुग में कीर्तन से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, और किसी उपाय से नहीं। तो वो सब गोपियों ने एक साथ में कीर्तन आरंभ किया। आरंभ करने के बाद में ही कृष्ण झट सामने आ गए। जब सामने आ गए तो कुछ लज्जित दिखाई पड़े। लज्जा किस लिए? तुम हमारे लिए घर में सब कुछ छोड़ करके आई, और मैं तुम्हें छोड़ करके अंतर ध्यान हो गया। मैंने बहुत बुरा काम किया, ऐसा समझ रही हो ना? इसलिए कुछ लजाते हुए, कुछ मुस्कुराते हुए, और गले में अपना पीताम्बर लगाए हुए, किसलिए? अत्यंत दीनता का सूचक, मुझे क्षमा करना है, ऐसे भाव लेकर के उनके सामने प्रकट हुए। कोई गोपी उनका हाथ अपने कंधे पर ले लिया, कोई पैरों को ले लिया, कोई कुछ कोई कुछ, कोई दूर से तिरछी नजर से उनके तरफ में देखती हुई, और सब चारों तरफ से घेर करके खड़ी हो गई। गोपियों ने उनसे पूछा, देखो जगत में बहुत तरह के प्रेमी लोग होते हैं, बहुत तरह के प्रेमी होते हैं। एक प्रेमी होते हैं मिछो भजंती, जे भजतो अनु भजंते एक एक एतद विपरिजयो। एक प्रकार के प्रेमी होते हैं जो प्रेम करते हैं तो प्रेमी से भी चाहते हैं कि हमको भी प्रेम करे। ऐसे ही अधिकांश लोग होते हैं, हम भी प्रेम करते हैं तुम भी प्रेम करो। ऐसा नहीं ये एक तरफा, हम ही प्रेम करते हैं तुम न करो। एक तो ऐसा प्रेमी होता है, प्रेम करने पर प्रेम करता है, और दूसरा होता है जो प्रेम करो और न करो वो तो करेगा ही, तुम मत करो किंतु वो करेगा, और करो तो कोई बात ही नहीं, वो करेगा प्रेम। और तीसरे ऐसे होते हैं जो प्रेम करने पर भी किसी से प्रेम नहीं करते। उन्होंने सोचा जे कृष्ण को इस जाल में हम लोग बझा लें और कृष्ण स्वीकार करें, प्रेम करने पर नहीं करता है, ये जरा कहें तो हम लोग ताली बजा करके उनको हंसी उड़ाएंगे। करें कहां हम सब कुछ छोड़ करके आए, और कहां ये भले मानुष क्या करते हैं, हम लोगों को छोड़ करके चले गए, हमको रुलाया, बन बन में भटकाया, इसलिए वो। किंतु इसमें एक वैज्ञानिक चीज है, बहुत गंभीर चीज है, कृष्ण इसको प्रकट कर रहे हैं। कृष्ण ने कहा प्रेम के बदले जो प्रेम करता है वो बनिया है ना, बनिया गिरी। इसलिए प्रेम के बदले प्रेम भाई, कुछ दिया कुछ लिया ये प्रेम नहीं है। प्रेमी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि मैं अपने प्रेमी से कुछ लूं, तब तब ये प्रेम होता है। प्रेम नष्ट हो जाने का कारण उपस्थित होने पर भी जहां प्रेम नहीं टूटता वो प्रेम ट्रांसेंडेंटल प्रेम है, जगत में वो प्रेम नहीं है, स्वार्थ भरा प्रेम है। चाहे जितना भी प्रेम करो ये जगत स्वार्थमय है। पत्नी अच्छी से सुंदर हो, गुणी भी हो, सब कुछ हो, और पति से पति के अनुसार में नहीं चलती है तो पति क्या करेगा? पति की बात ही नहीं मानती, पति उसे रखेगा थोड़े। और जरा नाक कट गया कहीं से या एक सफेद हो गया यहां, तो फिर क्या होगा? दूसरी जल्दी से घर में ले आकर के दूसरी को बसाएगा। ये जगत स्वार्थ का है। भगवत भक्त ही निश्चल हो सकते हैं ऐसे, और परमार्थ में ही जगत में वहां पर प्रेम है, इस जगत में प्रेम नहीं। अजमा करके देख लीजिए, अपनी पत्नी को या पति को या बच्चों को देख लीजिए, जगत में प्रेम नहीं है, प्रेम वहीं पर है। तो वो कह रहे हैं कृष्ण देखो मैं इसके अंदर नहीं हूं, प्रेम करने वाले को ही प्रेम करता हूं ऐसा नहीं, इसलिए पहली श्रेणी में तो नहीं है। देखो इसमें धर्म भी नहीं है, सौहृद भी नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, ये झूठी चीज है, बेकार की, ये प्रेम नहीं है। दूसरा क्या? ओ देखो प्रेम नहीं करने पर भी पिता माता और गुरुजन अपने बच्चों को स्नेह करते हैं, चाहे बेटा बदमाश आवारा गुंडा निकल जाए, तभी माता पिता ये नहीं चाहेंगे कि इसका ये पतन हो, उसको जैसे तैसे उसके कल्याण ही की चेष्टा करते हैं। इसमें कुछ धर्म भी है ना? और इसमें सौहार्द माने बंधुत्व भी है, ये अच्छी चीज है। तो ये केवल तुम लोगों में है, मैं नहीं इसमें। तुम लोग मैं प्यार करता हूं, प्रेम करता हूं या नहीं करता हूं, तुम लोग किंतु हमें प्यार करती हो, प्रेम करती हो, हमारे लिए सर्वस्व अभी तक छोड़ करके हमारी सेवा के लिए कर रही हो, किंतु मैं ऐसा नहीं करता। और दूसरी बात, जो भजन करने पर भी और नहीं करने पर भी किसी का भजन नहीं करता, वो कौन है? मैं उसमें नहीं, इसमें भी नहीं हूं। ये सात तरह की चीजें हुई, इनमें से किसी तरह का मैं नहीं हूं। जो भजन करने पर भी भजन नहीं करता, जो प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं करता, वो तो सुखदेव गोस्वामी नारद जी जैसे हो सकते हैं, वो आत्मा में ही तृप्त हैं, वो आत्माराम हो सकते हैं, जिनकी कोई भी इच्छा नहीं है और आत्मा में ही भगवान में ही रमण करते हैं सब समय। वो उल्लंघ रहेंगे, उनको तुम गाली दो तो भी और प्यार करो तो भी, उनसे कुछ लेना देना नहीं है, वो किसी से प्रेम नहीं करते, वो तो अपना सर्वस्व कृष्ण के चरणों में उन्होंने समर्पण कर दिया, इसे आत्माराम। और जिनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं, वो आप्त काम कहलाते हैं, उनकी सब कामनाएं मिट गई हैं, ये किसको किस लिए करेंगे? तुम प्रेम करो न करो, उनसे कुछ भी आता जाता नहीं। और तीसरे हैं अकृतज्ञ। अकृतज्ञ माने अपने माता पिता की, अपने मित्रों की, दूसरों की भलाई को नहीं जो मानते हैं, किए हुए उपकार को, उनको कहते हैं अकृतज्ञ। ये लोग हैं जिसको उपकार खूब उपकार किया तो भी उस उपकार को भूल जाते हैं, ये अकृतज्ञ हैं। माता पिता के या पति के या पत्नी के उपकारों को भूल जाते हैं, ये अकृतज्ञ हैं। मैं इसमें भी नहीं हूं। और गुरुद्रोह, गुरु का द्रोह आचरण करने वाले हैं, वो तो अकृतज्ञ थे, उसके उपकार को नहीं मान रहे। और ये क्या, माता पिता ने जिनके जीवन भर सेवा की और बूढ़े हो जाने पर अब तो कुछ कर नहीं सकते, तो उनकी सेवा करने में भी आनाकानी करते हैं, और बूढ़े होने पर यदि खांस दिया तो बच्चों की नींद यदि कुछ बिगड़ गई, घर से निकलो, हमारे बच्चों को सोने नहीं देगा, बिना कारण ही उन पर अत्याचार करते हैं। जिस स्त्री ने सेवा की, जिस पति ने सेवा की और उसके विरुद्ध कुछ हो जाने पर ऐसा करते हैं, ये गुरुद्रोही। शिष्य भी जिसको उन्होंने पुत्र की भांति पाला निस्वार्थ रूप में और भगवान का भजन की शिक्षा देने की चेष्टा की, नहीं समझ सका भजन और उनका विरुद्ध आचरण करने लग गया। कुछ कथाओं को सीख लिया, अब वो कुछ पैसे तो रोजगार कर ही लेते हैं अपने लिए, तो उनको अभिमान हो गया और फिर गुरु के द्रोही बन जाते हैं, बिना कारण ही उसके विपरीत कुछ बोलते हैं, उनकी निंदा करते हैं, ये सब गुरुद्रोही है। तो ये इनमें से मैं कोई एक भी नहीं हूं। तो गोपिया ने, तब आप कौन है? तो कहा जी देखो, नहम तो सबको भजतो भी जंतुन भजाम मेष्याम अनुवृत्त वृत्त यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तत्चिंत्यान निवृतो न वेद। देखो सखियों में कहीं दूर नहीं था, तुम्हारे पीछे पीछे था। मैं केवल ये सुनना चाहता था कि हमारे विरह में तुम लोग क्या करती हो। हमने सुना, मैं छिपा नहीं, केवल छिप गया था, वहां सुन रहा था। मिलने में तुमको कितना आनंद होता है मुझसे, ये तो समझता हूं। अब विरह में तुम्हारी क्या दशा होती है, ये जगत को शिक्षा देने के लिए ये हमारा विरह नहीं सख सकती। यही यथार्थ प्रेम है, इसकी शिक्षा देने के लिए ऐसा करता हूं, नहीं तो नहीं होता। इसलिए मैं यही छिप गया था। जिस प्रकार से उदाहरण देकर के बतला रहे हैं, जिस प्रकार से एक दरिद्र व्यक्ति को कहीं से धन मिल गया, कोई चिंतामणि मिल गई, चिंतामणि सफेद पत्थर जैसी चकचक करती हुई, किंतु किसी ने उसे चुरा लिया तो वो बड़ा चिंता कर रहा था जी, बड़ा सुंदर सा एक वो था, चमक रही चीज, उसको किसी ने ले लिए। किसी ने बतलाया ना, अरे वो तो सफेद कांच नहीं था, वो हीरा था, करोड़ों करोड़ों रुपयों का मूल्य का। तब एकदम रोने लग गया। इसलिए मैं छिप गया जल्दी से, मिला हुआ धन भी जरा चला गया ना। इसलिए हमारे विरह में तुम कैसे तड़पती हो, ये जगत के लोग सीखे, भगवान के लिए कैसे तड़पा जाता है, इसकी शिक्षा देने की। और तुम्हारी प्रशिक्षा विश्व भर में देने के लिए, जो गोपियों से बढ़कर के हमारा और कोई भी प्रिय नहीं है, गोपियां ही हमारी सबसे अधिक प्रियतमा है। वो जैसा कर सकती है किसी के लिए संभव नहीं कर सकते। इसलिए गोपियों के अनुगत्य में जो भजन करेगा, वैसे भाव को प्राप्त होने के लिए, वही साधक सर्वोच्च साधक है। ये सब बहुत शिक्षाएं इसमें है। एवं मदर्थो उद्धत लोक वेद स्वाना है जो मई अनुवृत्ते बला मया परोक्षम भजता तुरोहिता। इसलिए मैं छिप गया था ये सब देखने के लिए, जगत में तुम्हारा प्रकाश करने के लिए प्रतिष्ठा, इसलिए मैं कहीं दूर नहीं गया। हे प्रियाओं, मैं तुम्हारा प्रियतम हूं, तुम हमारी प्रियतमा हो, इसने हमारा दोष मत देखो, किसी विशेष कारण से ऐसा किया था। न पारे हम निर्वध्य संजुजान, भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं तुम्हारा ऋणी हूं। न पारे हम निर्वध्य संजुजान सुसाधु कृतंग विबुधा जुसा, मैं देता हूं जैसी लंबी आयु पाकर के भी करोड़ों करोड़ों, तुम्हारे इस ऋण से कभी मैं मुक्त नहीं हो सका, न हो सकता हूं। गोपियों, तुमने हमारे लिए सर्वस्व किया, सब कुछ छोड़ दिया, लज्जा तक को भी छोड़ दिया, इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी हूं। मां भजन दुर्जर गृह सिंह, गृह की श्रृंखलाओं को तुमने छोड़ दिया, ऐसा छोड़ना कठिन है, आज तक किसी ने छोड़ा नहीं, ऐसा नहीं किया, तुमने छोड़ दिया। इसलिए तुम्हारा प्रेम कैसा है हमारे प्रति, अत्यंत पवित्र है, बहुत, ऐसा जगत में नहीं है। इसलिए तुम अपने साधुता से ही हमारे ऋण को मोचन कर सकती हो, अन्यथा मैं नहीं, ऋण नहीं हो सकता। तुम अपनी साधुता से इस ऋण से मुझे मुक्त कर सकती हो। गोपिया कहते हैं, खिलखिला करके हंस पड़ी, ओ आपने हम लोगों के प्रेम को बहुत प्रशंसा की है, इसलिए अब हम तुम्हारी ऋणी हो गई, एक दूसरे के ऋणी हो गए। इति श्री श्रीमद्भागवतम गौर प्रेमानंदे। इन शिक्षाओं को लेकर के भगवान का भजन करेंगे, भगवान के भजन में कष्ट नहीं है, सुख ही सुख है। यदि दुख भी आता है तो तुम्हारे लिए ऑपरेशन करते हैं, तुम्हारे सुख के लिए। इसलिए हमारी ये कथाएं झूठ मूठ ऐसे नहीं चली जाएं, हम ये बहुत बड़ी चीज देने के लिए आए हैं, पहले ही आपसे कह चुके हैं। इस चीज को यदि आप लोग लेंगे, आपका जीवन सार्थक हो जाए। यदि कृष्ण भक्ति थोड़ी सी भी हो गई, ऐसे भगवान का नाम लेना आरंभ कर दिया, कुछ कुछ दीक्षा हो और न हो तो भी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। यदि एक बार भी कर सको रोज, अंततः कुछ दिन करके देखो, जरूर तुम्हारे दुख जाएंगे और सुखी हो सकते हो, तुम्हारी चिंताएं और प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी जरूर निश्चित रूप में। आप लोग आजमा करके देखेंगे, मैं तो अगली वर्ष फिर आ ही रहा हूँ। यदि किसी का ऐसा न हुआ तो हमसे आप लोग नालिश करें और देखूंगा जैसे किसका किसका ऐसा हुआ। तो तब तक रोज एक एक बार करो तो हम आकर के देखें जो कौन किया किसका दुख रह गया, ये मैं आकर के नोट करके देखूंगा। गौर प्रेमानंद। आज हमारी कथा यहाँ की समाप्त हुई, अभी हम लोग आरती करेंगे और आरती के बाद में पुष्प यहाँ रखा है हाथों से लेकर के, ये भागवत कृष्ण का स्वरूप है, इसको अर्पण करेंगे। अर्पण करके फिर हम परिक्रमा करेंगे, जो कलश जिन्होंने लाया है वो अपना अपना कलश ले लेंगे और फिर मैं उनको वो दे दूंगा। आप लोग बांट लेंगे, वो जो नारियल उसमें से है वो अमृत हो गया है, उसे भगवान की भक्ति होगी, इसलिए वो नारियल को बड़े आदर के साथ उसके टुकड़े टुकड़े कर करके छोटे छोटे और अपने समाज में सबको तुम लोग बांट देना। बस
the class on the 21st of May in Houston, PM on Srimad Bhagavatam in Hindi. Hare Krishna.